रात्रि क्लास चल रहा था 13/1/1967 दूसरी पेज के मध्य आदमी में बात चल रही थी कि महाशिवरात्रि जब मनाते हैं तो क्या होता है। हमको ये बात समझानी है क्योंकि किचन से भी तो साल बाई साल मनाते हैं ना। क्या मनाते हैं अपने धर्म पिता की यादगार मनाते हैं ना। कितना शोर शराबा करते हैं। देखो बड़ा भारी जलसा मनाते हैं। तो हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए है? भक्ति मार्ग में तो न अपने धर्म पिता को जानते थे न धर्म ग्रंथ को जानते थे न अपने धर्म का पक्का कोई नाम जानते थे। हिंदू धर्म कह देते थे अभी तो तुम बच्चों ने जाना है कि हमारे धर्म का स्थापक कौन है। कौन है हमारे धर्म का स्थापक? वो ही आदि पुरुष है। जो बाप के बीज रूप बच्चों ने ज्ञान योग के आधार पर बड़ा माना जाता है। योगीश्वर कहते हैं, ज्ञानेश्वर कहते हैं, अर्थात ज्ञानियों का ईश्वर, योगियों का ईश्वर। फिर भक्ति मार्ग में समझ लेते हैं कि शंकर कोई अलग ईश्वर है योगियों का। प्रश्न को भी मान लेते हैं, योगी राज, योगियों के ऊपर राज करने वाला। अब योगियों का बड़ा, बड़े से बड़ा एक होगा या तीन तीन होंगे? वास्तव में वो सतयुग के आदि में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण था, हे कृष्ण नारायण वासुदेव गायन करते हैं, वो कृष्ण की बात नहीं है। ये तो संगम युगी कृष्ण की बात है। जो वास्तव में योगी राज है, योग लगाने वालों का राजा। परंतु योग लगाने वालों का राजा निराकार है या साकार है या निराकार साकार का मेल है? सिर्फ निराकार नहीं है, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी शिव नहीं है? जिसकी निराकारी आत्मा का ही नाम शिव है वो ही योगीश्वर नहीं है? योगियों का राजा नहीं है? क्यों?
अकर्ता
है?
अकर्ता।
हाँ, उसे योग लगाने की दरकार है ही नहीं। योगी उसे कहा जाता है जो योग लगाता है। वो आत्माओं का बाप तो सदा शिव कहा जाता है, सदा योगी है, कभी भी योगी बनता ही नहीं। हाँ, इस सृष्टि में आकर जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब वो रथधारी आत्मा जब शिव समान संपूर्ण योगी बनती है, योग का पुरुषार्थ करते करते तब योगीश्वर या योगी राज कही जाती है। जिस राजयोग के द्वारा इस दुनिया में पुराने धर्म, पुराने राज्य की स्थापना होती है, राजधानी की स्थापना होती है, सृष्टि की अव्वल नंबर राजधानी, अव्वल नंबर धर्म, तो धर्म पिता भी कैसा होगा? अव्वल नंबर धर्म पिता मुसलमानों में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। क्या? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना किसने की? अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचे ने की, ऊंचे थे ऊंचा और नीचे थे नीचा कहाँ का गायन है? साकार सृष्टि का गायन है। तो तुम बच्चों को भी उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बड़े धूमधाम से जलसा कहो, प्रत्यक्षता कहो, जन्मदिन कहो, दुनिया में भी बच्चे पैदा होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, तो धूम धड़ाके बाजे बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? वो तो स्थूल बाजे बजाते हैं, और तुम भी बाजे बजाते हो, है? है? ज्ञान के बाजे बजाते हो। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव के जन्म दिवस के टाइम पर धूमधाम से जलसा मनाना होता है, क्योंकि सारी दुनिया, सारे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हमको ही फॉलो करते हैं। दुनिया में सभी धर्मों की परंपराएं, खास भारत की परंपराएं, ये परंपराएं कहां से शुरू होती है? कौन शुरू करने का निमित्त बनता है? जो तब्बलम्र ब्रह्मासु विष्णु बनता है, विष्णु माना ही नो भी शैताल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। जो चित्रों में विष्णु को दिखाते भी हैं, सर्प सर्पिणियों की संशय्या पर पड़ा हुआ है, परंतु उन सर्प सर्पिणियों के संग का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती की यादगार में तुमको ही त्रिमूर्ति ही बनानी चाहिए। क्या क्या बनानी चाहिए? तीन मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति का प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस सन 47 से मनाना चाहिए है? क्योंकि त्रिमूर्ति की यादगार ओम मंडली का जब विध्वंस हुआ, विघटन हुआ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा नामधारी संगठन शुरू हुआ है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू हुआ। ओम मंडली का विघटन हो गया, तो ओम मंडली हो या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हो, ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ, उस ब्रह्मा की हम जयंती मनाए, जो शिव की एक मूर्ति है, पहले पहले प्रत्यक्ष होती है, मनाए? क्यों?
शरीर ही छोड़ दिया।
हाँ, शिव सत्य है, कहा भी जाता है सत्यम सुंदरम, अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड एंड ट्रुथ इज वन। परंतु किसके बीच में त्रुट, कैसे प्रैक्टिकल में गायन होता है? सत्य परम धाम की बात है, कहाँ की बात है? इस साकार दुनिया में सत्य कौन है एकमात्र, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, सदा अटल है, सदा अविनाशी है। भक्ति मार्ग में भी अविनाशी गाया जाता है, कौन?
शंकर
नारायण, तो फिर भी सचित के आदि का गाया हुआ है, क्योंकि नारायण 16 कला संपूर्ण है। नर से नारायण बनता है, तो जरूर बनाने वाला कोई और उससे भी ऊंचा है, जो बनाने वाला है वो भी सत्य है या असत्य है? सत्य है, और एकमात्र सृष्टि पर वो ही सत्य है जो कभी सृष्टि रूपी रंगमंच से नदारत नहीं होता है। सदा है, सदा रहेगा और सदा ही रहा था। कौन? ब्रह्म। ब्रह्मा अगर रहा होता तो ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा होती, मंदिर बनते, मूर्तियां बनती, पूजन होता। होता है तो साबित होता है कि ब्रह्मा की वो मूर्ति जो त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाई गई है वो संपन्न मूर्ति नहीं है, भले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, परंतु वो ब्राह्मण नौकुरियों के गाए जाते हैं। एक से एक ऊंची कुरी, एक से एक नीची कुरी, तो वो ब्रह्मा अव्वल नंबर ब्रह्मा हुआ क्या? नहीं, अव्वल नंबर ब्रह्मा जिसे परम ब्रह्मा कहा जाता है, जिसके लिए गीता में लिखा है मत योनि ही परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मुझे परम पिता की, परम पुरुष की योनि रूपा माता महत ब्रह्म है। कौन? महत ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, बात एक ही, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, परंतु वो कैसा ब्रह्मा है? अव्वल नंबर का ब्रह्मा, जो आदि में भी है और अंत में भी है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है पुरुष की एक स्त्री गई, दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, परंतु ज्यादा मान मर्तबा कौन सी स्त्री का रहता है? हैं? कौन सी स्त्री के बच्चे जायदाद के सबसे बड़े मालिक बनते हैं? हैं? पहली स्त्री के, अव्वल नंबर स्त्री के। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी, कैसे, किसके द्वारा? परम ब्रह्म के द्वारा पड़ती है। परम पुरुष पिता, परम पिता शिव जिस माता पर आशिक होता है वो अव्वल नंबर चुनी हुई माता कौन से देश की है? भारत देश की है। इसलिए
खास भारत ही है जो मात्र प्रधान देश है। दुनिया का कोई भी विदेश मात्र प्रधान नहीं है। तो अब्बल नंबर ब्रह्मा सो अब्बल नंबर विष्णु। अब्बल नंबर कैसे है? अब्बल नंबर विष्णु ऐसे कि विष्णु की नंबर बार चार मददगार रूपी आत्माएं विशेष सहयोगी हैं। बुझा माने सहयोगी। उन चारों ही जो सहयोगी भुजाओं को चलाने वाला, उन चारों भुजाओं से ऊंचा कोई है या वो भुजाएं अपने आप चलती हैं?
चलाने वाला है।
चलाने वाला कोई है? जैसे मनुष्य में दो भुजाएं होती हैं, वो दोनों भुजाएं अपने आप नहीं चलती। चलाने वाली आत्मा ऊपर है। जो उत्तम आत्मा है वो उत्तम अंग में रहती है। सभी इंद्रियों का संचालन करती है। ऐसे ही विष्णु की जो चार भुजाएं हैं उनको संचालन करने वाली, चार भुजाओं रूपी आत्मा को संचालन करने वाली आत्मा विष्णु का जो विराट रूप दिखाया जाता है तो उसमें कहां बैठी होगी?
ऊपर।
ऊपर माने कहां? चोटी में, ब्राह्मण चोटी में है वो भी ब्रकुटी के मध्य में ही बैठती है। ब्रकुटी माना ही बड़ी पूरी कुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी, सदा समृद्ध। ऐसी आत्मा परम ब्रह्म सो परम विष्णु कही जाती है। परंतु विष्णु की चारों ही भुजाएं स्वभाव संस्कार से एक होकर चलती हैं या आपस में लड़ती हैं? एक होकर चलती हैं। इसलिए एक विष्णु गाया जाता है। आत्माएं भले पांच हैं इसलिए पंचमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी महादेव गाया जाता है। मूर्ति बनती है, पूजी जाती है, परंतु है एक। वो एक ही आत्मा है जो संपन्न बनने पर, सार रूप धारण करने पर त्रिमूर्ति शिव कही जाती है, जिसके लिए शिव बाप ब्रह्मा मुख से बार बार कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को कि पहले पहले किसका परिचय देना चाहिए? बाप का परिचय त्रिमूर्ति में देना चाहिए। बच्चे समझ ही नहीं पाते। बेसिक वाले ब्राह्मण आज भी त्रिमूर्ति में जब बाप का परिचय देते हैं तो किसको समझते हैं और किसको समझाते हैं? कौन है गीता का भगवान? है है ब्रह्मा कुमारियां बेसिक वाले है। ब्रह्मा को मान लेते हैं वही गीता का भगवान साकार कृष्ण है। उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला है या बनने वाला है। तो जो बनाने वाला है 16 कला संपूर्ण, वो कलाओं के हिसाब से कैसा होगा है, कलाओं में बंधा हुआ होगा या कलाओं से परे होगा। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कैसा, कलाओं से अतीत परे। और सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र का कल्याणकारी, और कल्प का अंत करने वाला, चतुर्युगी का अंत करने वाला कौन, शिव बाप कल्पांतकारी है, है? कल्प का आदि करने वाला तो कहें, क्या अंत भी वही करता है? है जब अंत करता है तो जो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, वो नंबरवार हाय हाय करते हैं या जय जयकार करते हैं, तो वो दुखदाई है, है? फिर किसके लिए कहा कल्पांतकारी? हाँ, ब्रह्मा का कार्य होने के बाद जो ब्राह्मणों की दुनिया शूटिंग पीरियड में कहो, रिहर्सल पीरियड में कहो, रिकॉर्डिंग पीरियड में कहो, तामसी बन जाती है, उस तमो प्रधान दुनिया का विनाशकारी है जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में भी बोला। क्या बोला? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। क्या बोला? तो कौन सी आत्मा बोली है? हर शंकर तो बोलता ही नहीं, मुख है ही नहीं उस समय, जिस समय बोलता है शंकर का पार्ट ही नहीं होता उस समय, बोलता तो ब्रह्मा के मुख से है। जिसे कहते हैं अव्वल नंबर में बाप दादा कंबाइंड, कौन, राम और शिव, राम और कृष्ण नहीं,
राम और कृष्ण,
राम और शिव बोला
कृष्ण,
राम और कृष्ण बाप दादा है अव्वल नंबर,
नहीं
शिवराम, राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा अव्वल नंबर बाप दादा हो, और कहने वाले कहें कि अव्वल नंबर बाप दादा, तो कहने वाले अव्वल नंबर बच्चे हैं या नंबर दो के बच्चे हैं? नंबर वन बच्चे हैं जो राम और कृष्ण की आत्मा को बाप दादा कंबाइंड समझते हैं।
नंबर दो के,
नंबर दो के कैसे?
नंबर वन तो राम और शिव है,
शिव बाप,
शिव बाप और राम, ये राम
बाप, एक कहे राम बाप, दूसरा कहे शिव बाप, राम बाप शिव बाप दोनों का कॉम्बिनेशन बाप दादा कंबाइंड, और दूसरा कहे नहीं राम बाप और कृष्ण बच्चा दोनों का जन्म इकट्ठा है इसीलिए वो कंबाइंड बाप दादा। तो फिर प्रूफ और प्रमाण बताना पड़े या नहीं बताना पड़े? क्या है प्रूफ कि सच्चा क्या है दोनों में? असली बाप दादा कौन है?
शिव बाप
बड़ा बच्चा
और राम बाप मनुष्य सृष्टि का बाप वो अब्बल नंबर बाप दादा प्रूफ अरे बाप तो कहते हैं सुप्रीम फादर कहते हैं बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कभी मानने के लिए तैयार तो कैसे मान लिया शिव बाप और राम बाप दोनों का कॉम्बिनेशन बाप दादा अब्बल नंबर भक्ति मार्ग में शिव शंकर का गायन है शंकर वो पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी बाप और बेटा तो एक जैसे होने चाहिए है? हाँ बाप तो कहते भी है मैं आप समान बना के जाता हूँ तो फिर
संपन्न बनते संपन्न
हैं एक जैसे तो है नहीं शंकर तो याद में बैठा हुआ है और शिव को तो याद करने की दरकार है ही नहीं तो एक जैसे कहाँ हुए है
देव देव महादेव शंकर
देव देव महादेव तो देवी है ना देव देव महाभगवान तो नहीं है
शंकर महादेव
शंकर महादेव है देव बड़ा कि भगवान बड़ा देव है या भगवान है देव है भगवान तो नहीं है तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है उसके समान बाप समान बाप का बड़ा बच्चा बाप समान ताकतवर बनता है तब बाप उसे वर्षा देता है सौंपता है संभालो ये दुकान संभालो ये कारखाने सारी प्रॉपर्टी सौंप करके खुद वानप्रस्थी या सन्यासी बन जाता है नहीं है बन जाता जो परंपरा आज भी भारत में चली आ रही दुनिया की सारी परंपराएं कहां से शुरू होती है संगम युग में किससे शुरू होती है, है? शिव बाप से शुरू होती है शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल रूप धारण करता है परम पुरुष का मनुष्य सृष्टि का परे ते परे रहने वाला पिता
परम पिता
सिर्फ परम पिता नहीं परम पिता कहेंगे जिसका कोई पिता नहीं और ये मनुष्य सृष्टि का पिता है परम पिता नहीं है क्योंकि मनुष्य सृष्टि के पिता का भी कोई पिता है जिस पिता से वो विश्व की बादशाही की युक्ति लेता है ज्ञान लेता है निराकार आत्माओं का बाप निराकार है तो निराकार ही वर्षा देता होगा ना हा? कि साकार वर्षा देगा
मेलमानियां अटारियां देगा। निराकार वर्षा क्या होता है? ज्ञान निराकार वर्षा होता है। तो शिव बाप आकते आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है जिसे मनुष्य आत्माओं का बाप कहा जाता है, उस आत्मा को बड़े बच्चे को अपना ज्ञान का पूरा वर्षा देता है। कैसा पूरा वर्षा? जो गाया हुआ है कि वो अकूट ज्ञान का भंडार है। कैसा अकूट ज्ञान का भंडार? ऐसा अकूट भंडार जो कभी खूटता ही नहीं। सारा का सारा ज्ञान निकाल लिया जाए, भंडार निकाल लिया जाए, कोई निकालने वाला हो तो फिर भी पूरा ही बचता है। ये भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पूर्णमिदं पूर्णमदाय पूर्णात् पूर्णम् विदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में कोई बच्चा होता होगा जो संपूर्ण अखूट भंडार को धारण कर लेता हो एक बार। कौन हो सकता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा? ये जो धर्म पिताएं हैं वो पिताएं तो कहे जाते हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि में वो धर्म पिताएं भी एक मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष को मानते हैं, जिसे उन धर्मों में एडम, आदम कहा जाता है, सृष्टि का आदि पुरुष मानते तो हैं, लेकिन बेचारे जानते नहीं। उसकी पूरी बायोग्राफी आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आकर के बताते हैं, और बताते भी हैं तो प्यार से बताते हैं, ये पहले से ही मारना शुरू कर देते हैं। कितने साल तक बताते रहते हैं?
100 साल
है,
80 साल हो गए।
80 साल हो गए तब से बताते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो। बच्चे टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। चलो ब्रह्मा कुमारियों की बात छोड़ दो, वो तो बेसिक ज्ञान लेती है, प्राइमरी लीला नॉलेज लेती है। जो एडवांस कहे जाते हैं कि हम एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, सुप्रीम सोल बाप का, वो त्रिमूर्ति में शिव बाप का असली परिचय देते हैं, त्रिमूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति के चित्र में देते हैं।
अभी देते हैं?
क्या देते हैं?
अव्यक्त मूर्ति
है,
अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग,
अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग, तो वो त्रिमूर्ति शिव होगा।
त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाता
है,
त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाता, मानता नहीं त्रिमूर्ति
जो है त्रिमूर्ति शिव, जिसका यादगार हम जयंती मनाते हैं, जय जयकार, साकार या निराकार? साकार। वो एक है वास्तव में या तीन अलग अलग है?
एक है और उसका नाम शिव कहा जाता है, परंतु शिव की पूजा होती है? शिव की पूजा नहीं होती। भले भक्ति मार्ग में भक्त लोग समझते हैं कि ये शिव है, परंतु अगड़म बगड़म कर देते हैं, शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं। अरे शंकर तो पुरुषार्थी है, याद का अभ्यास कर रहा है, वो संपूर्ण योगी कैसे कहें? उसे शिव कैसे कहें? सदा सत्य कैसे कहें? तो वो मूर्ति बताओ, न ब्रह्मा न विष्णु न पुरुषार्थ करने वाला शंकर, फिर भी तीन मूर्तियों का समुच्चय है, संघात है, वो कौन है?
शिवलिंग।
अरे वो एक है या तीन है? एक है या तीन है?
एक भी है,
तीन भी है। शिवलिंग है, उसमें शिव है, शिव है।
शिवलिंग
तो कहते हैं कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है, और कोई देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती है। तो जो मेरा लिंग है वो मेरा है। अच्छा, और जो पुरुष हैं इस सृष्टि पर मनुष्य मात्र हैं, उनका लिंग नहीं है, है? अरे औरों का भी लिंग है या नहीं? 500-700 करोड़ का, वो मेरा नहीं है।
सामान नहीं बनता है।
हाँ, और जो मनुष्य मात्र हैं, वो उस कामेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते, अमोग वीर्य नहीं कहे जाते, होते भी नहीं। इसलिए दुनियावी संतान बिच्छू टंडन पैदा करते हैं या ब्राह्मणों की सृष्टि रचते हैं? है? बिच्छू टंडन की सृष्टि पैदा करते हैं। जो अमोघ मूर्ति है वो बिच्छू टंडन नहीं बनाती, क्या बनाती है? नौकुरियों का ब्राह्मण भी नहीं बनाती है। कौन सी कुरी के ब्राह्मण बनाती है? सूर्यवंशी ब्राह्मण। चढ़ती कला के ब्राह्मण सुदेवता या उतरती कला के ब्राह्मण सुदेवता? चढ़ती कला के ब्राह्मण सुदेवता। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा या दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, अपने फॉलोअर्स को बनाते भी हैं, तो उतरती कला की आत्मा हुई या चढ़ती कला की आत्मा हुई?
उतरती उतरते कला से
है,
उतरते कला
क्यों
नहीं बनाते नहीं बनाते
नहीं बनाते? अरे अपने बच्चे नहीं बनाते, देवता नहीं बनाते? सतयुग में देवता उनकी पीढ़ी में बनते नहीं है,
गिफ्टी कला वाले सतयुग से, गिफ्टी कला वाले
सतयुग में जो पहला पत्ता होता है मनुष्य सृष्टि का, जो सोलह कला संपूर्ण कृष्ण बनता है, वो भी इंद्रियों का सुख भोगता है। अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगता है, इसलिए इंद्रियां देह का अंग होने से विनाशी सुख देंगी या अविनाशी सुख देंगी? जो लक्ष्मीनारायण के चित्र में दिखाया है, साक्षात्कार से बना हुआ चित्र है, राधा कृष्ण एक दूसरे को श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से प्यार से देख रहे हैं, सुख ले रहे हैं, सुख दे रहे हैं। जो सुप्रीम सोल बाप का भी कहना है, सुख लेना है इंद्रियों से और सुख देना है, न दुख लेना है न दुख देना है, ठीक है। सतयुग के आदि में वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं? तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले? उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं, लेकिन उनको सोलह कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है प्रैक्टिकल में, वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है, जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोगी राजयोग के द्वारा नंबर वार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते और धर्म की आत्माएं, धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स, उस संगम युग में तो सभी होते हैं, सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती, उतरती कला में ही रहती हैं, संपूर्ण योगी नहीं बनती। तो संपूर्ण योगियों को जो राजयोगी राजयोग की प्रैक्टिस करके नंबर वार इंद्रियों को जीतते हैं, पक्का पक्का आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हैं, उन सबका बाप प्रैक्टिकल में राजयोगी, कैसा राजयोगी? प्रैक्टिकल में तो, लेकिन योगियों का ईश्वर, ईश माने शासन करता, योगियों का राजा, कंट्रोलर, इसलिए नाम दिया जाता है राम। नाम के आधार पर, नाम के आधार पर गायन होता है। रमिते योगिनो यस्मिनेति राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती हैं, मस्ती मारती हैं, आनंद लेती हैं, ऐसा राम। किसकी याद में, किसकी याद में?
एक शिव बाबा,
दूसरा न कोई है। एक शिव बाबा कौन? निराकार। तो बाबा कहाँ हुआ? निराकार तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, बाबा कहाँ है? ग्रैंडफादर कहाँ है? है ग्रैंडफादर तो है ही नहीं, तो कौन है? है ऐसा योगी बनाने वाला कौन है? योगी ईश्वर है। कौन है? मनुष्य सृष्टि का साकार बाप। मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारियों का बाप, विकारियों का बाप कैसा होगा? है विकारियों का बाप विकारी, तो प्रजापिता तो हो सकता है। 500-700 करोड़ प्रजा का पिता हो सकता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता जो कैसा गाया जाता है, है? अरे जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने में एवर प्योर गाया जाता है प्रैक्टिकल में। कैसा प्योर? एवर प्योर कैसे? प्रैक्टिकल में कैसे? अरे याद से,
प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा।
सिर्फ याद से कहें तो क्या सन्यासी है? प्रवृत्ति मार्ग की याद से, सिर्फ योगी नहीं कर्म योगी। कैसा योगी? कर्म योगी। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए योगी। और कर्म इंद्रियों में भी कौन सी कर्म इंद्रिय? काम इंद्रिय से कर्म करते हुए भी उसका यादगार संसार में दिखाया जाता है। खुदाइयां हुई हैं सारी दुनिया में, जहां वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, और भारत में गांव-गांव, शहर-शहर में मंदिर बने हुए हैं यादगार, उस प्रवृत्ति मार्ग की यादगार के, कर्म योगी के, कि कर्म इंद्रिय से कर्म भी कर रहा है, प्रवृत्ति में भी है। किसमें है? प्रमाणे प्रकष्ट, वृत्ति माने वृत्ताकार। जहां जहां शिवलिंग के मंदिर हैं, वहां जलाधारी के चारों ओर अर्घा होता है या नहीं? ऐसा ऐसा गोल व्रत होता है या नहीं? तो प्रवृत्त, साधारण वृत्ति नहीं। स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृष्ट वृत्ति, ऐसी वृत्ति में रहने वाला इंद्रिय से भी प्रवृत्त, फिर भी
कर्म तो करता है, कर्मेंद्रिय से ऐसी यादगार तो दिखाते हैं, फिर भी भोगी है या योगी? क्यों? सभी मनुष्य मात्र भी तो ऐसे ही करते हैं अपने प्रवृत्ति के जीवन में। वो क्यों पूजनीय, वो क्यों एवर प्योर प्रैक्टिकल जीवन में, दूसरे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि जो 10 इंद्रियां हैं व्यक्त रूप में दिखाई देती हैं, उन व्यक्त इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो 11वीं इंद्रिय मन है, जो 10ों इंद्रियों का कंट्रोलर है, वो मन उस कर्मेंद्रिय के साथ नहीं है। मन का काम क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। उसका मन जो है वो ऐसा कोई विपरीत संकल्प नहीं करता है जो आत्मा का अधः पतन हो जाए। आत्मा ही सत्य है कि देह और देह की इंद्रियां सत्य हैं? आत्मा सत्य है, वो सत्य नीचे नहीं जा सकता। ऐसे वो मन कंट्रोल करता है और उस मन को जो बुद्धि रूपी आत्मा है, तीसरा नेत्र जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है, कंट्रोलर है। ऐसी स्थिति में इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती। जब मन उनको सहयोग ही नहीं देता, सुख का अनुभव नहीं कर सकती, दुख का भी अनुभव नहीं कर सकती, सुख दुख से परे हो जाती है आत्मा। जब ऐसी स्टेज हो जाती है तो उसे परम पुरुष कहा जाता है, जो सदा काल के लिए संगम में परम पुरुष का पार्ट बजाता है। उसी समय की यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। शिवलिंग के रूप में तो ऐसा शिवलिंग जो संपूर्ण रूप धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में, उसे मास्टर त्रिकालदर्शी कहा जाता है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं, तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, सिर्फ क्या सुखदाम और दुखदाम इन दो लोगों का मालिक मैं नहीं हूं। जो मुरली में बोला भी है,
सुखदाम की दुनिया मेरी है तो दुखदाम की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है कि शिव ने बोला? ब्रह्मा ने बोला। तो जो ब्रह्मा बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, वो शिव की आत्मा नहीं बोलती है। बोलती है क्यों? उनको अपना मन है ही नहीं। मन किसको होता है? मनुष्यों को, देवताओं को या भगवान को? मनुष्यों को मन होता है, चला है मन। भगवान तो सदा मन चैन में रहने वाला है, कभी भी बेचैन होता ही नहीं। तो वो आत्मा तो ये बात बोल ही नहीं सकती। क्या? मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो कौन बोलता है? हाँ, साकार मनुष्य आत्मा है, जिसका मन कहो, जिसका दिल कहो, किसके ऊपर है? दुनिया के हर बाप का मन या दिल अपने बड़े बच्चे के ऊपर होता है। अपने बड़े बच्चे को ही सारे जीवन की कमाई सौंप के जाता है, तो उसका दिल कौन हुआ? है बड़ा बच्चा। परंपरा कहां से शुरू? संगम युग से। परमपिता आते हैं, शिव आते हैं, तो उनका दिल किसके ऊपर जाता है? बड़ा बच्चे के ऊपर जाता है। बड़े बच्चे के ऊपर जो दिल जाता है, तो सब बड़े बच्चे को ही जो वसुधैव कुटुंबकम की रचना करनी है, उस वेद के कुटुंब का पहला पालन करता बनाता है। परिवार में भी, सामान्य लौकिक परिवार में भी पहला पालन करता कौन होता है? बड़ा बच्चा। है? बच्चा बाद में पैदा होता है कि पहले अम्मा होती है? है? माँ को बनाता है। तो शिव बाप ने भी बच्चे को पहले चुना या माता के रूप में चुना? माता के रूप में क्यों चुना? नहीं, माता है बाप समान, संपूर्ण बुद्धिमत्ती या अपूर्ण बुद्धिमत्ती? है संपूर्ण बुद्धिमती, अपूर्ण बुद्धिमती होती है। बाप ज्यादा बुद्धिशाली होता है, उसके मुकाबले माता जड़त्वमय बुद्धि वाली है। कहते हैं प्रकृतिपति पुरुष और माता है प्रकृति। प्र माने प्रकष्ठ, कृति माने रचना। तो ऊंचे थे ऊंचे भगवंत की प्रवृत्ति किसके साथ है? है? अरे किसके साथ है? अरे प्रकृति के साथ है वो, पुरुष है, आत्मा है और वो प्रकृति है। कौन चैतन्य है, कौन जड़ है?
प्रकृति जड़,
जड़ है और पुरुष रूपी आत्मा चैतन्य है। चैतन्य जड़ को कंट्रोल करता है या जड़ चैतन्य को कंट्रोल करता है? चैतन्य जड़ को कंट्रोल करता है। तो जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि में जड़ और जंगम दोनों का बाप है। क्या कहा? जड़ सृष्टि और चैतन्य सृष्टि, वो मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, सबका बाप, सबका सृजनहार, पिता। तो जड़ और जंगम दोनों का जो ओरिजिन है उसको शिव बाप चुनता है। क्या? शिव बाप चुनता है और उसको मुकर्रर रथ बनाता है। रथ क्यों बनाता है? आत्मा को अपना क्यों नहीं बनाता? है नहीं, रथ को इसलिए चुनता है कि रथ जड़त्वमयी है या चैतन्य है? जड़त्वमयी रथ है। जो बोला गीता में भी, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये जो तेरा शरीर है, रथ है, ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र माने है युद्ध का स्थान, स्थान जड़ होता है, स्थावर होता है या जंगम होता है? जड़ होता है। तो जिस रथ को पकड़ता है वो ऐसी आत्मा है जो अंतिम जन्म में आकर के अंत के भी अंत में, क्या कहा, 84वें जन्म के भी अंत में आकर के निर्जीव बन जाता है। जैसे चैतन्यता उसमें है ही नहीं, इसलिए बोला अगर इस चैतन्य रथ में से, साकार में से शिव को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? शव रह जाएगा। शव चैतन्य होता है या मिट्टी होता है? मिट्टी होता है, पत्थर है, पत्थर है। लोग गीत भी गाते हैं, क्या, पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा माना, ये क्या जाना, बड़ी भूल हुई। क्या हुआ? बहुत भूल हो गई। पत्थर बन जाता है, उसमें
संकल्पों का खून बहता है। अरे शव में, मुर्दे में खून बहता है? अच्छे संकल्पों का, बुरे संकल्पों का खून बहता है? नहीं बहता। इसलिए बोला भक्ति मार्ग में भी मानते हैं, बाबा भी बताते हैं, जब तुम बच्चे इस विषय सागर में, विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, जो विराट पुरुष दिखाते हैं, पूरे ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी मात्र बचती है। क्या बचती? चोटी मात्र बचती है। उस चोटी को पकड़ के खींचता हूं। अब बताओ, चोटी में संकल्पों का खून बहता है? नहीं बहता है ना। तो जो चोटी के बाल हैं, चोटी है, उसे निर्जीव कहें या जीवंत कहें? है, उंगली को काट दो तो उसमें फड़क 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 फड़कती रहेगी, है ना, क्योंकि उसमें खून बहता है। और चोटी को काट दो, गिरा दो नीचे, तो फड़केगी? नहीं फड़केगी। क्यों? क्योंकि उसमें संकल्पों का जीवंत खून है ही नहीं। तो मैं किसे पकड़ करके खींचता हूं? चोटी को पकड़ कर खींचता हूं। सारे संसार में जब जलमयी हो जाती है, क्या एटम बम फटते हैं, इकट्ठे फट पड़ते हैं, तो पृथ्वी सारी डोल जाती है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और सारी मनुष्य सृष्टि का, जानवरों का, पशु पक्षियों का खात्मा हो जाता है। समंदर में गर्मी की वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल के जितने भी मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब टूट टूट करके समंदर में गिर जाते, समा जाते। और पृथ्वी जो प्रधान ग्रह है, उसके हड़कंप में आने से सभी ग्रह उपग्रह हड़कंप में आ जाते हैं, उनके बीच पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भी इतना हड़कंप में आता है जो शक से अपनी माता की गोद में आ गिरता है। कौन है माता? चंद्रमा। प्रशांत महासागर में चिपक जाता है, तो प्रशांत महासागर का जल स्तर और सारे समंदर का जल स्तर इन कारणों से अत्यंत ऊंचा चला जाता है या नीचे रहेगा? है, सारी सृष्टि जलमयी हो जाती है, सभी द्वीप महाद्वीप भारत को छोड़ करके साफ समंदर के अंतराल में समा जाते हैं। भले पृथ्वी के दो देशांतर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही क्यों न हो, वो भी कहां समा जाते? समंदर के
अंतराल में समा जाते, थोड़ा सा हिस्सा बचता है भारत का, उसमें भी एक चोटी है जो संसार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, एवरेस्ट। वो एवरेस्ट है, पूर्वीय सभ्यता का प्रतीक है, जहां से ज्ञान सूर्य उदय होता है। अष्ट देवों में एक देव माना जाता है, जहां शंकर की मूर्ति रखी है, उस दिशा को ईशान कोण कहते हैं। कौन सा कोण? ईश्वर का कोण, जहां से ईश्वर उदय होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो ही दिशा है जहां एवरेस्ट चोटी है, वो जड़ चोटी है। और जड़त्व की यादगार कोई चैतन्य भी होगी या नहीं होगी, तो वो चोटी पर वो एक ही सत्ता आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आज से अंत तक पाठ बजाती है, जिसे ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल शिव बाप ने भी बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है और कोई इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। तो जो सदा कायम है उसका यादगार वो जड़ चोटी भी है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और चैतन्य चोटी भी है, वो परा प्रकृति का यादगार है। प्रकृति गीता में भी दो प्रकार की बताई गई, जड़ प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़त्व, और उनके चैतन्य रूप देवताएं, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि, वो परा प्रकृति है। जैसे परम पुरुष है तो परम पुरुष की परा प्रकृति भी है, वो परा प्रकृति इस शक्ति रूपी रंगमंच पर जड़त्व रूप में ही रहती है कि जड़ और चैतन्य के सार रूप में भी रहती है, है? जड़ का भी सार रूप लिंग और चैतन्य का भी सार रूप बिंदु, जिसका सात्व के यादगार सोमनाथ के मंदिर में बनाया गया था। लिंग है बड़ा रूप, साकार रूप, पत्थर दिखाया जाता है, टोटल पत्थर, और उसके बीच में हीरा, हीरो पाटधारी। वो हीरो पाटधारी शिव है या नहीं? शिव की आत्मा हीरो पाटधारी है या नहीं? क्यों? क्योंकि हीरो पाटधारी आदि से अंत तक हर सीन में पाट बजाता है, और शिव इस सृष्टि में चार युगों के चार सीन में लगातार पार्ट नहीं बजाता, जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता है। तो वो रूप है जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप, सार रूप शिवलिंग, जिसमें लिंग है साकार, जड़त्व रूप पत्थर बुद्धि। कैसा पत्थर बुद्धि? जैसे आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक एटम बम बनाने वाले इतने पत्थर बुद्धि हैं कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटते हैं, जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं उसी वृक्ष को नष्ट करने का बारूद तैयार कर लेते हैं। तो चैतन्य बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? और इतना ही नहीं, उन पत्थर बुद्धियों का भी बाप है कोई, जो पत्थर बुद्धियों का बाप उन पत्थर बुद्धि नास्तिकों से भी बड़ा सा बड़ा खतरनाक पत्थर बुद्धि है। क्योंकि वैज्ञानिक एटमिक एनर्जी बना तो लेते हैं, देश देशांतर में बड़े बड़े एटम बम हजारों हजार मेगावाट के तैयार कर लेते हैं, परंतु उनका विस्फोट करने में है उनको बहुत डर लगता है। क्या कितने साल हो गए है? 36 में एटमिक एनर्जी का मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान भी नहीं था। जब से भगवान इस सृष्टि पर आता है गुप्त रूप में, तब से एटमिक एनर्जी का निर्माण शुरू होता है। प्लानिंग शुरू होती है और उसका छोटे से छोटा रूप 20-20 मेगावाट की दो बम्बियां नागासाकी और हिरोशिमा पर डाली जाती है, हद में भी और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो हीरो की क्षमा थी वो नष्ट हो जाती है। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, दो दिन रहकर वो हीरे साथ साथ पता नहीं कहां चले गए। तो कितने साल हो गए?
80 साल।
इतने वर्षों के बाद भी जिन वैज्ञानिकों ने हजारों हजार मेगावाट के एटमिक एनर्जी तैयार कर ली, वो बेचारे उसे यूज करने में, विस्फोट करने में असमर्थ हैं, डरपोक बन जाते हैं। तो उन विनाशकारियों का भी कोई बाप चाहिए या नहीं चाहिए? जो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। या सिर्फ सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणकों से ही कहते हैं। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं या नहीं है, उनसे नहीं कहते हैं है? 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भी तो आत्माएं हैं ना, उनसे नहीं कहते हैं है? उनसे नहीं कहते, उनका बाप नहीं आया हुआ, उनका बाप भी आया हुआ, लेकिन कौन कहते हैं, कौन सी आत्मा कहती है कि तुम्हारा बाप आया हुआ है? दादा लेकर आज ब्रह्मा कहता है? जब सृष्टि का विनाश होगा तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा जीवंत रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी, तो कौन कहता है, है? मनुष्य सृष्टि का बाप है जो परम ब्रह्म के रूप में ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा वाली आत्मा कहती है क्या कि अभी तो मेरा माँ का पार्ट है, पहले पहले बच्चों के सामने परिवार में कौन सा पार्ट धर जाता है, माँ आती है, तो मेरा माँ का पार्ट है, लेकिन सदैव ये पार्ट नहीं रहेगा। क्या कौन सा पार्ट बन जाएगा? ये आत्मा तो अनेक जन्मों की शूटिंग करने वाली है, तो तुम बच्चों का बाप है, अच्छे से अच्छे वातावरण में, समस्याओं में, अच्छे से अच्छे तुम्हारे कर्मों में भी बाप है, और बुरे से बुरे कर्मों में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है, कि तुम एटमिक एनर्जी बनाए तो सकते हो, संसार की विनाशकारी, सारी दुनिया का विनाश करने वाली चीज बनाए सकते हो, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि तुम्हारे धर्म पिताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पुराने संस्कारों का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश कर सके। वो कार्य उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है मनुष्य रूप में, इस मनुष्य शक्ति पर जो भारत में और विदेशों में भी माना तो जाता है, गाया तो जाता है, आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम के रूप में, लेकिन उसकी जीवन कहानी को कोई जानता नहीं है, तो वो बाप जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर रावण संप्रदाय कल्याणकारी हैं एक दूसरे के, या कल्याणकारी बन गए, पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य एक दूसरे के कल्याणकारी बन गए, रावण संप्रदाय बन गए, उन सबका विनाश कर देगा जो बोला बहुत तंग करेंगे तो क्या करूंगा, विनाश कर दूंगा। तो ब्रह्मा के रूप में भी, शंकर के रूप में भी, और माता पिता का जो कॉम्बिनेशन है ब्रह्मा और आदि पिता, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु, चार भुजाओं वाला नहीं। वो तो कवियों की भाषा है, समझने की बात है। वो विष्णु रूप भी है, नो विषय टाल, विषय विकार से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है, है?
अपवित्रता,
अपवित्रता विषय विकार से विनाश होता है। तो वो विष्णु रूप भी है, तीनों ही मूर्तियां उस अव्यक्त रूप में समाई हुई है। क्या जड़त्वमयी ब्रह्मा की मूर्ति पत्थर बुद्धि भी है, है या नहीं है? अरे ब्रह्मा पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि, भले अव्वल नंबर ब्रह्मा हो, सुप्रीम सोल बाप की पहली रचना है तो भी पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि, पत्थर बुद्धि। यादगार में भी दिखाते हैं, मूर्तियां भी बनाते रहे, स्वर्णलिंग रजत लिंग चांदी का, ताम्रलिंग लौह लिंग या पत्थर लिंग, ऐसे पत्थर को क्या बनाता हूँ? पारस बुद्धि बनाता हूँ। कौन कहता है? शिव बाप कहता है, बनाता है प्रैक्टिकल में। शिव बाप प्रैक्टिकल में बनाने के लिए बैठा रहता है विनाश काल तक, है? वो तो कहता है कि मैं आता हूँ तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ, मैं आता हूँ तो एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ, कि मैं विनाशकारी हूँ, मैं विनाशकारी नहीं हूँ। जिस विनाश काल में इस सृष्टि की प्रत्येक मनुष्य आत्मा बेचैन हो जाती है कि चैन में रहती है, है? बेचैन हो जाती है, तो मैं विनाश काल तक नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं जब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी तो विनाश भी स्वतः ही शुरू हो जाता है। तुम्हारी संपूर्ण राजधानी बनेगी तो पुरजोश से संपूर्ण विनाश शुरू हो जाएगा, जोर शोर से चतुर्थ विशुद्ध शुरू होगा। तो बताया वो विनाशकारी मूर्ति कौन सी?
शंकर
के लिए गाया हुआ है, और शंकर भी विनाशकारी मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, तो उसकी साकार कर्मेंद्रियां विनाश करती होंगी, वो विनाश करता नहीं है।
असर संकारणी
हाँ, वो विनाश करता नहीं है। जैसा ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में बोला, क्या कि शंकर सिर्फ गाया जाता है विनाशकारी, परंतु शंकर कोई विनाश थोड़े ही करता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि करना धरना इंद्रियों से होता है, या बिना इंद्रियों से होता है? है, इंद्रियों से होता है। और शंकर तो इंद्रियों से कुछ करता ही नहीं, कैसे करता है?
शक्तियों को प्रेरणा देता है।
हाँ, प्रेरणा देने का काम इंद्रियों से नहीं होता है, प्रेरणा देने का काम अव्यक्त मन बुद्धि का है, या इंद्रियों का है या शरीर का है? है, अव्यक्त मन बुद्धि रूपी आत्मा का है। इसलिए विनाश का प्रैक्टिकल पार्ट शक्तियां बजाती हैं, मैं प्रैक्टिकल में विनाश नहीं करता। तो शिवलिंग त्रिमूर्ति कैसे है? अरे पहली मूर्ति ब्रह्मा है या नहीं है? परम ब्रह्म है या नहीं है? पहली मूर्ति तो है। ब्रह्मा रूपी माता पुरुष रूपी आत्मा के मुकाबले जड़त्वमयी है या चैतन्य है? माता जड़त्वमयी है। तो जो जड़त्वमयी है वो जड़त्वमयी अव्वल नंबर में रखी जाए या दूसरे नंबर में रखी जाए? है, दूसरे नंबर में रखी जाए। जगत पिता और जगत माता कौन विनाशकारी है? जगत माता के लिए कहा जाता असुर संहारिणी, जगत पिता के लिए नहीं कहा जाता। जो जगत पिता गाया हुआ है खास भारतवर्ष में, उसकी यादगार है कि असुर भी राक्षस भी उसे अपना इष्ट मानते हैं और मनुष्यात्माएं देवात्माएं भी उसे अपना इष्ट मानती हैं, दोनों ही उसे अपना इष्ट मानते हैं, कोई भी शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो असुरों का भी बाप है और देव आत्माओं का भी बाप है। इसलिए बोलता है कि सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? सुख देने वाले देवताओं की दुनिया भी मेरी है और दुख देने वाले राक्षसों की दुनिया भी मेरी है। कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य शक्ति के बाप वाली आत्मा बोलती है। तो देखो वो जो लिंग रूप है वो जब तमो प्रधान बनता है तो वो माता का रूप है, क्या परम ब्रह्म का रूप है, चोटी का रूप है। कैसा ब्राह्मण है? अव्वल नंबर का ब्राह्मण या मध्यम या लास्ट है? अव्वल नंबर का ब्राह्मण तो है। ब्रह्मा का पहला पुत्र है, प्रैक्टिकल जीवन में कहा जाता है, लेकिन वास्तव में शिव पिता है और जिसको आधार लेता है शरीर का, लिंग का, रथ का, वो जड़त्व रूपी रथ है, क्या है? आधार है, जड़ है, माता है। तो दोनों का मेल प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। वो पिता है, जड़लिंग माता है, वो पिता जड़त्वमयी लिंग में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है, नहीं है बनाता है, तो चैतन्य कहा जाएगा या जड़ कहा जाएगा? तो चैतन्य बनता है, वो ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है, परम पवित्र बन जाता है या परम अपवित्र रहता है? है परम पवित्र बन जाता है ब्रह्मा सु विष्णु, और विष्णु रूप बनने से पहले और ब्रह्मा रूप के बाद दोनों का मध्य रूप में जो रूप है, कौन सा रूप है, कौन सी मूर्ति? शंकर मूर्ति। शंकर का क्या पार्ट है? कुछ भी नहीं। फिर कहीं बोल दिया शंकर का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, जैसे कि है ही नहीं। तो क्या पार्ट है? है? हाँ, प्रेरणा का पार्ट है, वो पार्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पार्ट तो इंद्रियों से बजाया जाता है, सिर्फ प्रेरणा कहें। और वो ऐसा प्रेरक आत्मा है जो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती विषपाई के रूप में गाया हुआ है। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री परम पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। तो ऐसा विष पीने में, ऐसा विषपाई बनने में सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती विषपाई कौन है? कौन गाया हुआ है जो सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश करता माना जाता है?
शंकर।
शंकर मिक्स पार्ट है क्या? हाँ, अच्छे से अच्छी आत्माएं और बुरे से बुरी आत्माओं का, कंट्रोल करने वाला जो ग्रुप है, अच्छे से अच्छा ग्रुप सूर्यवंशी, और बुरे से बुरा ग्रुप जानवरों से भी बदतर, क्योंकि जानवर नहीं जानते कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, जानते हैं? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में भी कोई नास्तिकों का ग्रुप है जो कोई पर आस्था नहीं रखते, कोई के लिए भी दुखदाई बन जाते हैं, तो ऐसों का भी वो बाप है। और बाप भी कैसा? इस मनुष्य सृष्टि में कोई बिरले ही बाप होते होंगे जो अपनी रचना बच्चे का खात्मा कर देते हो, हत्या कर देते हो, कोई हुए होंगे हिस्ट्री में, खोज की जाए तो इस सृष्टि में सब तरह के मिलते हैं। मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे। ऐसों का भी बाप, क्योंकि
उसमें वो आत्मा भी संगम युग में लंबे समय तक पार्ट बजाती है जो वासुकी नाग कहा जाता है। कौन है वासुकी नाग? कौन से अंग में दिखाते हैं?
गले में।
गले पड़ गया क्या? वासुकी, वसु का बच्चा वासुकी, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। ऐसे ही भागवत और महाभारत में वसुदेव का बच्चा वासुदेव। कृष्ण को दिखाया है, वास्तव में वो सृष्टि का पहला पत्ता वासुदेव नहीं, ये संगम युग की यादगार है। शिव है वसुदेव, वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव। उसका बच्चा है वासुदेव कृष्ण। संगम युगी कृष्ण कब तक है? कृष्ण तो बच्चे का नाम है, उस मनुष्य तन में जो गले पड़ा हुआ नाग के रूप में है वो कब तक बच्चे के रूप में है? जब तक ना समझ है तब तक कि समझदार होने के बाद भी है ना समझ है तब तक, बाद में वो गले में पड़ के रहेगा, गले को जकड़ करके रहेगा नहीं रहेगा। तो ये जो नाग दिखाया गया है वो धर्म का राजा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। क्यों? नाग को अच्छा मानते हैं, है? नाग से दूर रहते हैं या रजाई में लेके सोते हैं? दूर रहते हैं, तो इतना बुरा क्यों मानते हैं? है? क्यों मानते हैं? क्योंकि वही आत्मा है जो वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में विनाशकारी बनती है। क्या अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा है? है अधूरी आत्मा है, वो अधूरी आत्मा अधूरा ज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? अधूरा ज्ञानी है। वो ही अधूरी आत्मा जब तामसी बनती है तो दुर्गा जो आदि में सात्विक होती है अंत में तामसी बनती है तो उस महाकाली के मस्तक में सवार हो जाती है। कौन? वो ही वासुकी। और प्रैक्टिकल में सारी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कराती है। कैसा विनाश? हद का या बेहद का? कैसा बेहद का विनाश? सारी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्येक ब्राह्मण जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा रहता है, अपना पूरा पोता मेल जीवन का नहीं देता, क्योंकि बोला है अपना पूरा पूर्व पूता मेल देने वाला कोई कोटो में करोड़ पुरुषार्थियों में कोई एक है तो सत्य बाप सत्ययुग की स्थापना करने वाला सदा सत्य उसको क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। तो जो इस सच रूपी रंगमंच पर आज से लेकर के अंत तक सत्य पार्ट बजाता है उसी सत्य पार्टधारी हीरो पार्टधारी को वो सुप्रीम सोल बाप क्या करता है? अपनाता है आप समान बनाने के लिए। तो साबित हुआ बाप का परिचय देना है जड़ जंगम सृष्टि का पिता जिसे कहा जाता है जड़ सृष्टि का भी बाप और चैतन्य सृष्टि का भी बाप आत्माओं का भी बाप और पांच तत्व जो जड़ रूप हैं, उनका भी जन्मदाता एक ही बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का, जिसके लिए गीता में कहा गया है अव्यक्त मूर्तिना। कैसी मूर्ति? मूर्ति मूर्तमान अमूर्त नहीं है, मूर्ति जो आंखों से देखी जाए व्यक्त व्यक्तित्व के रूप में पर्सनालिटी, उसको गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा क्योंकि मूर्ति तो है यादगार को आंखों से देखा भी जाता है लेकिन उसमें हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। जिनको ज्ञान की आंख है वो उन इंद्रियों को नहीं देखते उसमें, जैसे कि वो इंद्रियां होते हुए भी नहीं है। आंखें हैं लेकिन आंखें होते हुए भी नहीं है, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी नहीं है, ऐसा पार्टधारी अव्यक्त मूर्ति उसी से ये सारा जड़ और जंगम संसार निकलता है और उसी में समा जाता है। पहले चैतन्य आत्माएं निकलती होंगी या पहले पंचभूतों का संघात पृथ्वी जलवायु अग्नि का संघात जड़ बाहर आता होगा। पहले क्या बाहर आता है? ये दोनों साथ साथ आते हैं। है? अरे
बाहर जड़
है, पहले जड़ बाहर आता है, है?
पहले पिंड होता है बाद में आत्मा प्रवेश करता है।
हाँ बाबा सदैव बाहर की दुनिया का मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग के जड़त्व मई भावनाओं का मिसाल देते हैं जो हद में वो बेहद में भी होता है। हद की दुनिया में क्या होता है? गर्भ में पहले आत्मा आती है या जड़ पिंड आता है? पांच तत्वों का पुतला क्या आता है? पिंड आता है।
चार पांच महीने के बाद जब वो पिंड संपन्न बनता है, हाथ पांव नाक आंख कान सब तैयार हो जाते हैं, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही है, उस अव्यक्त मूर्ति से पहले पहले क्या प्रत्यक्ष होता है, क्या तैयार होता है, हैं? जड़ पांच तत्वों का संघात सार रूप में तैयार होता है। पांच तत्वों की जो प्रकृति है वो पहले तैयार होती है, और उन पांच तत्वों से सात्विक तत्वों से बनी हुई जो मूर्तियां हैं नंबर वार, जिन्हें मनुष्य सृष्टि का नंबर वार पत्ता कहा जाए, और उन पत्तों को जन्म देने वाला चैतन्य बीज कहा जाए, प्रवृत्ति मार्गीय बीज, द्विदल बीज, जो मनुष्य सृष्टि जड़ तत्वों से तामसी बन गई थी और चैतन्य आत्माओं से भी है तामसी बनकर परमधाम वासी हो गई। कहां की वासी? परमधाम, ऊपर के धाम। जैसे सृष्टि पर कोई परमधाम तैयार होता है, सृष्टि पर परमधाम तैयार होता है, कहां? माउंट आबू है, हाँ। कोई मनुष्य आत्मा है, हीरो पाटीदारी, जो इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले परमधाम को अपनी मन बुद्धि में उतार लेती है, मन बुद्धि में परमधाम की स्टेज तैयार कर लेती है। जिस परमधाम की स्टेज में वो सदा रहने का अभ्यास कर लेती है, फिर नंबर बार जो भी बच्चे परमधाम वासी बनते जाते हैं, कौन से मंत्र के आधार पर? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा?
ब्रह्मा के मन,
परम ब्रह्म, उसके मन में समा जा। जो अव्वल नंबर है प्रैक्टिस में, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है, वो किस साकार को याद करती है, हा? कौन से साकार निराकार के मेल को याद करती है, हा? ब्रह्मा बाबा विनाशी को याद करती है, विनाशी को याद करेगी तो विनाशी बनेगी या अविनाशी बनेगी? विनाशी बनेगी,
विनाशी से कल्याण होता है,
विनाशी से कल्याण होता है। कल्याण हो गया आपकी ब्रह्मा कुमारियों का, जल्दी कल्याण हो गया होगा,
दोनों मिलकर के कल्याण
होगा, दोनों मिलकर के ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा और सरस्वती,
एडवांस जगदम्बा,
एडवांस जगदम्बा, महाकाली है ठप। चलो बताया, कि वो अविनाशी आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदैव सत्य का पाठ बजाती है, असत्य से एक टक्कर लेती रहती है और कोई भी टक्कर में कभी किसी से हार नहीं खाती है। इस मनुष्य सृष्टि में शास्त्रों में एक ही आत्मा का गायन है जिसकी कभी भी युद्ध में हार होती ही नहीं। कौन आत्मा? सत्यनारायण। वो नारायण वाली आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्ट बजाने वाली हिस्ट्री में भी प्रसिद्ध रहती है। चाहे कैसे भी आतताई विदेशी आए हो आक्रामक, जघन्य रूप धारण करके हिंसक या अहिंसक है, हिंसक बन करके आए हों, वो भी दुम दबा के भागते रहे, वो भी हार गए। जो विश्व विजय की आकांक्षाएं लेकर के आते हैं, भले वो हिटलर हो, नेपोलियन हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, उसे जीत नहीं सके। परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि उस गुप्त पार्टधारी को ये सारी मनुष्य शक्ति पहचानती है, है? पहचानती ही नहीं, क्योंकि संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी उसने ऐसा ही पार्ट बजाया है। कैसा पार्ट है? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। संगम में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है, यज्ञ के आदि में भी ऐसा ही पार्ट बजाया, मध्य में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है और अंत में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है। इसलिए जैसी शूटिंग होती है वैसा बड़ा ड्रामा होता है। उसको पहचानने वाली आत्मा सिर्फ एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के पार्ट को जानने वाली है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सच्चा पार्ट बजाता है? कौन बजाता है? शिव बापू। शिव बाबा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है और सब डोलायमान हो जाते हैं, डोल जाते हैं, अचल नहीं रह पाते। वो जो अचल है उसका यादगार है अचलगढ़। गढ़ माने किला। किसका किला है? अटल रहने वाले का किला, जो रामायण में भी दिखाया गया। कौन? अंगद। नाम क्या दिया? अंग। अपने शरीर का अंग अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। द माने देना। रावण उसके बुद्ध रूपी पांव को हिला नहीं सका, बाकी चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे सारी बानर सेना हो, चाहे कोई भी हो, सबके बुद्ध रूपी पांव को रावण हिलाए देता है, लेकिन एक के बुद्ध रूपी पांव को हिला ही नहीं पाता। तो उसी की यादगार दिखाते हैं क्या है अचलगढ़ भी और अंगद और एवरेस्ट चोटी, सारी दुनिया डूब जाती है लेकिन वो चोटी डूबती नहीं। तो बताया ये त्रिमूर्ति ही तुम्हारा बाप है, शिव बाप। क्या? न ब्रह्मा, न विष्णु और न शंकर, तुम्हारा वही बाप है जो भारत में भी खास और सारी दुनिया में जिसके यादगार मंदिर बने हुए हैं, दुनिया की सभी देशों की खुदाइयों में वही लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली, वो सार्वभौम है, सबका पिता है, कोई देवता पिता नहीं है, कोई मनुष्य पिता नहीं है, सारी मनुष्य सृष्टि का, कोई राक्षस प्रता नहीं है, परंतु वो राक्षसों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। बाबा ने कल लिख दिया है कि 4x3 के बड़े बड़े चित्र जैसे ये हैं, लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति के चित्र, और जिसमें वो पहेलियां भी लिखी हुई हैं, कोई समझाने भी लिखी हुई है, तो लिखना ऐसा जैसे कि हो रहा है। अभी भी जो इनसे लिखवाते थे से लिखाते थे, अभी स्थापना हो रही है, क्या हो रही है, कहे की नई दुनिया की स्थापना हो रही है 67-66 में है? हो रही है, हो ही नहीं सकती क्योंकि बोल दिया, वेदवाणी में ही बोल दिया,
10 वर्ष कम 5000
ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, अमृत पीकर अमर देवताएं बनते हैं क्या? जो गीता ज्ञान है उसमें से अमृत निकाला जाए, क्या निकाला जाए, सार निकाला जाए, मक्खन निकाला जाए, तब क्या कहे जाएगा, ज्ञानामृत। उस ज्ञानामृत को पीने के बाद जो पीते हैं वो अमर देवताएं बनते हैं, उनकी इच्छा मृत्यु होती है, जबरन मृत्यु नहीं होती। तो अभी अभी विनाश होना है, इस स्थापना हो रही है तो काय की स्थापना हो रही है? विनाशी दुनिया की, विनाशी राजधानी की स्थापना हो रही है जिसका विनाश होना है, या विनाशी दुनिया अविनाशी राजधानी की स्थापना हो रही है? हैं? अच्छा, 66 संस्कृत में गीता ज्ञान के द्वारा जो ज्ञानामृत बना ही नहीं था, अरे फिर बोला विनाश होना है। किसका विनाश होना है? जो स्थापना हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया की, उसका विनाश होना है या सिर्फ बाहर की दुनिया का विनाश होना है? है? हाँ, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में हर कार्य होना चाहिए, फिर बाद में बाहर की दुनिया में होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले स्थापना, लेकिन ब्राह्मणों की स्थापना, नौकुरी वाले ब्राह्मणों की स्थापना नंबर वार। और उन्हीं में से विनाश, क्या उसी दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, उसी दुनिया का विनाश? कहते हैं शास्त्रों में भी लिखा है और प्रैक्टिकल में ये नजर आ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और 3 बार खारिज कर दी, नष्ट कर दी। क्यों? क्योंकि संतुष्टता नहीं हुई। आदि में 36-37 में स्थापना हुई ओम मंडले की, ब्राह्मणों के पहले संगठन की स्थापना हुई, और 42-45 तक विनाश भी हो गया। ओम मंडली का संगठन उड़ गया कि रह गया? नए संगठन की स्थापना हुई किसके द्वारा?
ब्रह्मा
द्वारा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा और 69-18 जनवरी को ब्रह्मा स्थापना करने वाले ने ही शरीर छोड़ दिया। तो दुनिया में भी देखा जाए, धर्म पिताएं जब तक मौजूद रहते हैं तब तक धर्म का उत्थान होता है, और धर्म पिताओं के जाने के बाद जब धर्म पिता के गद्दी में सींदेदारी धर्मगुरु बनते हैं तो उस धर्म का उत्थान होता है या विघटन होता है? क्या होता है या है? ये नियम बना हुआ है कि परिवार का पिता जितना कल्याणकारी होता है उतना कल्याणकारी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी रचना नहीं होती। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, उनका शरीर छूटने के बाद ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में विघटन की निशानियां आ गईं, जो ब्राड ड्रामा में भी देखी जाती हैं। मुख्य से मुख्य एक निशानी बताते हैं, बाकी एडवांस के सीढ़ी के चित्र में ढेर निशानियां दी गई है भक्ति मार्ग की। वो एक निशानी है कि जिस वर्ष में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसी वर्ष में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने अपने जोन इंचार्ज जोन अलग अलग कर लिए। पहले सारे भारत के सेवा केंद्रों का संचालन माउंट आबू से ही होता था, बाद में
उनके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में जोनल इंचार्ज बनाए लिए गए। तो अलग अलग राज्य स्थापना की शूटिंग हुई या नहीं हुई? विघटन हुआ। अलग अलग भाषाएं भी बन गईं। अपने अपने प्रदेश की भाषाओं में लिटरेचर भी छपना शुरू हो गया। तो ये विघटन की मुख्य निशानी सामने आ गई। तो बताया विनाश भी होना है, माना टोटल विनाश भी होना है। 66-67 में ही बोल दिया और वेदवाणी में भी बोल दिया परमपिता ने ब्रह्मा के मुख से कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 66 के बाद 10 वर्ष जोड़ दें, 76 आता है। 76 में ब्राह्मणों की पुरानी बेसिक दुनिया का विघटन शुरू हो गया और नए ब्राह्मणों के संगठन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा का पाठ खलास हुआ, सहनशील माता का पाठ खलास हुआ और जो मनुष्य सृष्टि का बाप जिसे नारायण नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? नारायण, जिसका दूसरा नाम भारत, काम के आधार पर नाम। भारत माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला। नारायण माने ज्ञान जल में घर बनाकर रहने वाला नारायण। ये सृष्टि के पिता का प्रत्यक्षता रूपी जन्म का प्रमाण मुरली में मिलता है और ये भी बता दिया कि 10 वर्ष के बाद नई दुनिया की स्थापना होगी और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। माना सर लक्ष्मी नारायण पद के अलावा कोई दूसरी आत्मा वो पद धारण नहीं कर सकेगी, टू लेट। और उसकी शिक्षा शास्त्रों में बता दे, जो मुरली में भी बोला, क्या विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आखिरी विजय तुम्हारी है। और बीच बीच में जो घायल होते रहते हैं योद्धाएं, परंतु भागते नहीं है, हिम्मतहीन होकर के धराशायी नहीं हो जाते, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ही विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार पाने वाला प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जा सकता है कि जो भी युद्ध करने वाले युद्ध करते हैं, सामना करते हैं, आखिरी
उनकी हार होती है या जीत पाते हैं, उनकी हार ही होती है, जीत पा ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप का जन्म सिद्ध अधिकार किस बात पर है? कौन सी प्रॉपर्टी पर? पहला जन्म सिद्ध अधिकार कौन सी प्रॉपर्टी पर हो जाता है? हाँ, ज्ञान का अकूट भंडार पर, प्राप्ति हो जाती है। फिर हारने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बताया, अभी स्थापना भी हो रही है और अभी के बाद फिर भविष्य में, निकट भविष्य में विनाश भी होना है, होना है। अभी 66-67 में हुआ नहीं है, क्या होना होना है। और 67 की वाणी है, और 68 के बाद क्या हुआ? 18 दिन के बाद है हरि विघटन, विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हुआ या नहीं हुआ? है निशानियां मिली या नहीं मिली? मिली। और फिर विनाश के बाद पालना भी होनी है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे वो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हो, आज बच्चे बनते हैं, बाप के घर में जन्म लेते हैं, और कल है माया क्या करती है? अनिच्छे की मौत सुलाए देती है। तो मर गए या जिंदा रहे? मर गए। ऐसा फाइनल विनाश, फाइनल परीक्षा माया की अभी हुई नहीं है। क्या माया और उसकी प्रखर सहयोगिनी शक्ति कौन?
प्रकृति।
दोनों ही वार करेंगी। क्या महाकाली भी वार करेगी और माया भी वार करेगी, और कोई को भी नहीं छोड़ेगी। क्या अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ने वाली, उनको भी एक बार की धराशाई कर देगी। फिर जैसे साइकिल सीखने वाला, साइकिल पर पहली बार चढ़ने वाला एक बार पूरा गिर जाता है, फिर फटाक से उठ जाता है, तो ऐसे ही धराशाई होने के बाद भले तुरंत उठ जाए, लेकिन फेल तो कर दिया ना। है जब कुश्ती लड़ते हैं तो चारों कोना जब चित्त कर देते हैं, टांगे भी चित्त, हाथ भी चित्त, और मोड़ा भी चित्त हो जाता है, तो हार मानी जाती है या जीत मानी जाती है? हार मानी जाती है। ऐसे इस मनुष्य सृष्टि की प्रत्येक आत्मा को, चाहे देव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, चाहे राक्षस से राक्षस क्यों हो, माया सबको दराशाही कर देगी, लेकिन प्रकृति पति को धराशाही नहीं कर सकेगी। प्रकृति पति को क्यों नहीं धराशाही कर सकेगी? कौन है प्रकृति पति?
प्रकृति पति भगवान है।
शिव बाप या शिव बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेशता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप उसको धराशायी नहीं कर सकती। क्यों?
प्रकृतिपति भगवान, मायापति भगवान,
क्योंकि जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन सबसे पहले पहले वो परम ब्रह्म कहा जाता है। तो परिवार में पहली माता जाति पवित्रता रूपी सत्य को धारण करती है या दोयम टाइम चौथे नंबर की माता धारण करती है? पहले नंबर की माता, जो परम पुरुष है शिव, उसके सत्य रूपी शक्ति को, पवित्रता को, पवित्रता के सार को धारण करती है। आज में सो अंत में भी धारण करती है। जिसने आज किया उसने अंत भी किया, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो वो आदि माता जड़त्वमयी या चैतन्य परम ब्रह्म
चैतन्य
चैतन्य में प्रवेश करता है, है? जड़ में प्रवेश करता है। वो जब तक प्रवेश है तब तक चैतन्य कहेंगे, प्रवेश नहीं है तो मुर्दा है, जड़ है। या तो शिव है और शिव नहीं तो शव है। ऐसे रथ में मैं प्रवेश करता हूं। किस बात में जड़त तुम्हारी बुद्धि है? अरे कोई पॉइंट है ज्ञान का? जिस ज्ञान के पॉइंट में जड़त तुम्हारी बुद्धि है, है? वो पॉइंट बुद्धि में बैठता ही नहीं। नहीं, बुद्धि में ही नहीं आता है। अरे है एक पॉइंट,
वही आत्मा ज्योति बिंदु
है,
वही आत्मा ज्योति बिंदु,
मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये बुद्धि में नहीं बैठता। यही पॉइंट नहीं बुद्धि में बैठता। बेसिक नॉलेज का पहला पॉइंट, पहली पढ़ाई, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, यही बुद्धि में नहीं बैठता है। तो 5 दिसंबर सबसे पहले है या सबके बाद में है या मध्य में है, है? या वो 5 दिसंबर दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला गया? नाइन तो 5 दिसंबर तो, लेकिन किस आत्मा के लिए बोला गया? मनुष्य सृष्टि की बाप वाली आत्मा के लिए बोला गया ना, कि वो आत्मा बेसिक नॉलेज लेने के बाद पहले पहले आत्मा की स्थिति धारण करती है प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बनता है तो शिव बाप उससे मिलन मेला पहली पहली बार मनाता है। वो हुआ अव्यक्त बाप दादा का मिलन। अव्यक्त बाप शिव और आत्माओं में बड़ा भाई प्रजापिता। प्रजापिता वाली आत्मा पहले पहले आत्मिक स्थिति में बेसिक नॉलेज को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है। नहीं, अगर धारण करे तो सूक्ष्म शरीर क्यों बने? जितने भी ब्राह्मण हैं शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु होती है तो बिंदु रूप बनकर के अकाले मौत होती है या सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा। वो ज्योति बिंदु आत्मा नहीं बन पाते, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सभी ब्राह्मण प्रैक्टिकल जीवन में ये अनुभव करें, प्रैक्टिस करें। जब किसी में कोई भूत प्रवेश करे, क्या उसका चेहरा मोहरा बदलता है ना, तो उस समय देवान को पूरा त्याग करके ब्रकुटी के मध्य में अपन को स्टार के रूप में देखते हुए उस आत्मा को दृष्टि दे, तो वो आत्मा दृष्टि नहीं लेगी, नीचे झुका जाएगी। क्या वो दृष्टि नहीं लेगी? क्यों? क्योंकि कि वो आत्मा स्थूल रूप धारण किए हुए है। आत्मा का स्थूल रूप है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी जब त्याग दे, ज्योति बिंदु बन जाए, तो फिर वो संपन्न आत्मा है। तो बताया, अभी स्थापना हो रही है, विनाश भी भविष्य में निकट में होने वाला है, सर सच में ही बोल दिया। और अगले वर्ष विघटन शुरू भी हो गया, और फिर बाद में पालना भी होनी है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में पालना भी होनी है और जन्म का हक भी अभी ले लो। पक्के ब्राह्मण बने, पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता बने। पक्के ब्राह्मण का हक है देवताई वर्षा धारण करना, सुख का वर्षा धारण करना, जीवन मुक्ति को धारण करना। जीवन मुक्ति तुम्हारा बेहद के बाप का वर्षा है, और मुक्ति भी बेहद के बाप का वर्षा है। मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, अभी ले लो इसी जन्म में, या अभी के बाद फिर कभी, अभी ले लो। ड्रामा प्लान के अनुसार 5000 वर्ष पहले के मुआफिक अभी ले लो। 5000 वर्ष पहले भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इसी ब्राह्मण शरीर में लिया था, अभी भी ले लो, परंतु अब नहीं तो फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या जीवन मुक्ति का वर्षा कभी नहीं मिलेगा? और सो भी ये विनाश, ये जो पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है, क्योंकि थोड़ा क्लियर करके लिखना होता है, क्योंकि जो गाते हैं ना वो ही तो हम लिखे ना। क्या है जो ऐसे कोई ना समझे कि हमारी इंसल्ट करते हैं? क्या गाते हैं विनाश के बारे में? है? नहीं याद है? गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या विनश्यति। किसके विपरीत बुद्धि? कौन भगवान? किसके विपरीत बुद्धि? विपरीत बुद्धि माने दुश्मन बन करके बोलते हैं, कर्म इंद्रियों से दुश्मन बन के कर्म करते हैं। क्या 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 करते हैं? है विपरीत बुद्धि बनकर के वाचा चलाते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ बोलते हैं और कर्म इंद्रियों से कर्म भी विपरीत करते हैं। क्या विपरीत करते हैं? सबसे बड़ा विपरीतकारी क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं? बाप कहते हैं एक से सुनना चाहिए, क्या अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहाँ शूटिंग पीरियड में सुनेंगे, रज रज के कान में मुंह लगा के कोई दूसरा न सुनने पाए। तो ब्रॉड ड्रामा में क्या होगा? है कुछ होगा प्रैक्टिकल में कि नहीं? दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे? फिर जिन धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे उनसे आंख भी लड़ा के व्यभिचारी बनेंगे, कानों से भी व्यभिचारी बनेंगे और बनते रहेंगे जन्म जन्मांतर। और कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों से भी क्या बनते रहेंगे? व्यभिचारी बनते रहेंगे। शुरुआत कहाँ होती है? संगम युग में। अभी शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है? कोई कोई की तो शुरुआत तो क्या, दूसरों के बातें सुनते सुनते फां हो जाते हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि टोटल देखने में आते हैं। वो तो प्रैक्टिकल में हो गए, लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल में तो नहीं होते लेकिन मन के अंदर संकल्पों से विचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं, विपरीत संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं, और आपस में एक दूसरे के कान में श्रीमत के विपरीत वाचा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, सदगुरु की निंदा कराते हैं या नहीं कराते हैं, ऐसे निंदकों के लिए रिजल्ट क्या बताया? कुछ बताया या नहीं बताया? सदगुरु निंदक ठौर न पाए। क्या ठौर न पाए? क्या ठौर है? वो तो धर्म गुरु कहते आए, सन्यासी कहते आए अपने फॉलोअर्स को, अपन को सदगुरु समझ लिया शिवो हम, और बोलने लगे सदगुरु निंदक ठौर न पाए। अरे तुम अपना ही ठौर ठिकाना छोड़ करके भाग खड़े हुए, हमको क्या ठौर देवे?
पद का विनाश
है।
पद का विनाश?
पद का विनाश कहाँ? संगम में है। संगम में पद का विनाश क्यों? सत्युग में नारायण नहीं बन सकते दूसरे नंबर तीसरे नंबर बाद के।
गिनती करा।
अच्छा, पहली पीढ़ी की नारायण नहीं बन सकते सत्युग में? बन सकते कि नहीं बन सकते? सदगुरु निंदक है और सतयुग में पहली पीढ़ी के नारायण भी बनेंगे नहीं बनेंगे है? माने दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो भी पार्ट बजाया वो सदगुरु निंदा की कोटि में आएगा या नहीं आएगा? है कैसे?
बाप की पहचान नहीं
है।
बाप की पहचान नहीं है।
बाप को पहचाना नहीं?
नहीं।
चलो चलो पहचाना नहीं कोई बात नहीं।
खुद ही गीता पति भगवान बनकर बैठा है।
हाँ मुरली में तो बोला। क्या बोला? क्या बोला गीता के भगवान के बारे में? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। और वो जानते हैं कि मैं सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण बनने वाला हूँ, है? मैं ही गीता का भगवान हूँ। उनकी बुद्धि में नहीं आता कि सदगुरु निंदक ठहर न पावे, ये अगले जन्म की बात है या इसी जन्म की बात है? हैं? इसी जन्म की बात है। तो चाहे ब्रह्मा की आत्मा ही क्यों न हो, चाहे उनका कोई अजीज बच्चा फॉलोअर ही क्यों न हो, वो इस जन्म में पुरुषार्थी जन्म में जहां हम पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई का रिजल्ट, उस पढ़ाई की प्राप्ति इसी जन्म में डॉक्टर मास्टर टीचर इंजीनियर बनेंगे। ब्रह्मा जैसी आत्मा है, है? इसी जन्म में बनेंगी नहीं बनेंगी? तो यहां की बात है कि संगम युग में जो सदगुरु की निंदा कराते हैं वो निंदक संगम युग में ठहर नहीं पा सकते प्रैक्टिकल जीवन में। कौन सा ठहर? माला के मण के सूर्यवंशी नहीं बन सकते, क्योंकि क्योंकि सदगुरु की इंसल्ट करते हैं। जो अक्षर वो कहते हैं सदगुरु कि भ्रष्टाचारी ये दुनिया का विनाश होना है, कौन सी दुनिया का है? ये दुनिया का विनाश होना है, वो दुनिया का नहीं। क्या? भ्रष्टाचारी ये दुनिया का विनाश होना है। और वो है श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना। ये तो लिखा हुआ है ना बच्चे। तो बाबा ने कहा ये त्रिमूर्ति, ये गोला और ये जितना ये है मेरे ध्यान में कि 4 फुट 3 फुट हो जाएगी या 4 फुट 4 फुट हो जावे सो इतना ही बड़ा होवे, बाबा का ऐसा विचार रहता है। बस चित्र और उनकी थोड़ी ऊपर में सजावट कर दे, मैं बत्तियों बत्तियों की जैसे सजाते हैं ना सजावट। और जो जो भी ब्राह्मण हैं अच्छे अच्छे और जो जो भी सेंटर्स हैं वो अपना बाहर में ये लगा देवे सजावट वाला त्रिमूर्ति का चित्र। कौन सी जयंती? अलानी जयंती। अलानी का मतलब है
कौन सी जयंती? फलानी माने
त्रिमूर्ति शिव जयंती।
हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो मनुष्य समझे इनके पास कुछ ये है, ये जयंती मनाए रहे हैं। जयंती साकार की ही होती है, जय अंति क्या, जिसकी जन्म लेते ही अंत में क्या रिजल्ट आने वाला है, जय। जन्म लिया, जन्म लेता है तो रोता है, या जिस माता ने जन्म दिया उसे कष्ट होता है या नहीं होता है, है? तो बच्चा भी रोता है, जिसका जन्म हुआ वो भी रोता है, फिर अंत में रिजल्ट क्या होगा, जिसे कहते हैं जय अंति, अंतिम रिजल्ट क्या होगा, जय जयकार होनी है इसी बच्चे की। तो आकर के देखेंगे किसको, देखेंगे कि त्रिमूर्ति शिव जयंती जो होनी है, जो संसार में मनाई जाती है, वो त्रिमूर्ति शिव कौन है, समझेंगे तब देखेंगे या बिना समझे देखेंगे, है?
समझेंगे तब देखेंगे।
त्रिमूर्ति शिव बाप को समझेंगे तब देखेंगे, और समझाने वाला समझाएगा तब देखेंगे कि बिना समझाए देखेंगे, है? समझाने वाला समझाएगा तब देखेंगे, और समझाने वाला खुद ही नहीं समझता होगा कि त्रिमूर्ति में किसकी जयंती, कब की जयंती, कब की यादगार है, अभी के पार्टी की यादगार है या निकट भविष्य के पार्टी की यादगार है, कौन सी यादगार है। तो आने वाले देखेंगे कि ये जयंती मनाए रहे हैं, आकर के देखेंगे, क्योंकि ऐसी भव्य जयंती, क्या ऐसा भव्य जलसा दुनिया में और कोई धर्म पिता के फॉलोअर्स ने नहीं मनाया, क्या दुनिया में बड़े से बड़ा धर्म पिता क्राइस्ट माना जाता है, दुनिया की लगभग आधी मानवीय जनरेशन का पिता, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं, और दुनिया में उसकी यादगार भव्य जलसे के रूप में मनाते हैं, मनाते हैं कि नहीं, है? सब दुनिया में देखते हैं या नहीं देखते हैं, वो देखने वाले भी कहें कि ऐसा कोई नहीं जलसा मनाएगा जैसा तुम लोग मनाएंगे। क्या कहा, दूसरा इन चित्रों को क्या जानते हैं कि शिव जयंती क्या है, क्या है,
संत और फादर
है,
संत और फादर,
संत और फादर, तो वो सन जो फादर को प्रत्यक्ष करता है, परम पिता को प्रत्यक्ष करता है, तो पहले इसी बात में फैसला करो कि फादर सो सन्स या सन सो फादर, दोनों में से पहले कौन,
Father
Son.
Father
Powerful.
Father Son.
Father Powerful.
हैं?
Father Powerful.
हाँ. तो Father ने संस माने पुत्रों को या पुत्र को प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? उस सुप्रीम सोल शिव ने जो तुरिया बाप है, ऐसा बाप, ऐसी आत्मा कोई दूसरी नहीं, उस बाप ने अपने बड़े बच्चे को प्रत्यक्ष किया नहीं किया?
किया?
लड़ाई लड़ो, पहले फैसला करो, किया या नहीं किया? है?
अभी नहीं किया,
अभी नहीं किया?
किया,
किया? ये नौ धर्मों के इकट्ठे हो गए क्या? है? फैसला करो, प्रत्यक्ष किया बाप ने बच्चे को, अपने बड़े बच्चे को प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? कब से? है? 76 से प्रत्यक्ष किया, उससे पहले नहीं? 36 से नहीं? है? है? 36-37 में वो प्यू की नाम से, 36-37 से वो प्यू के नाम से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? है? प्यू के नाम का बोलबाला था या नहीं था? जो ब्रह्म वाक्य में बोला, मुरली में बोला, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, टीचर होकर के बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे, हम समझते थे ये तो बड़ा अच्छा नंबर माला में आवेगा।
वो बच्चे थे अभी नहीं।
तो कोई बच्चे आज में भी थे या नहीं थे? है? तो प्रत्यक्ष नहीं किया? हाँ? अरे अरे, किया या नहीं किया?
किया,
किया। बता दिया कौन है? सारी दुनिया को बता दिया है? सारी दुनिया को तो नहीं बता दिया, चलो सभी ब्राह्मण बच्चों ने जान लिया कि ये हमारा अविनाशी बाप है। है? नहीं जाना? जाना होता तो उस ब्राह्मणों की दुनिया में बाप ने जिसको अपने बड़े बच्चे के रूप में सिलेक्ट किया, दादा लेखराज ब्रह्मा, अभी शूटिंग पीरियड में सिलेक्ट किया तो सतयुग में भी सिलेक्ट किया, तो वो बच्चा जब धोबी घाट की बात बाहर की दुनिया में पहुंची कुछ विधर्मी बच्चे थे ब्राह्मणों की दुनिया में, जिन्होंने अंदर की बात बाहर कर दी, परिवार की बात को बाहर में दे दिया, तो जब बाहर की दुनिया वालों के बीच बड़ा संघर्ष से छिड़ गया, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली के बीच, तो सबसे पहले ब्राह्मणों के उस संगठन को, ओम मंडली के संगठन को छोड़ करके कौन भाग गया? वो ही भाग गए, और सारा परिवार संभालने वाली माता ही भाग जाए, भाग गई ना? किसी को पता नहीं चला कहां चले गए। बाद में पता चला कि पाकिस्तान में समंदर के किनारे कराची में जो बंगला था उस बंगले में जाके छुप गए। बाद में पता चला, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने को आया तब पता चला। तो देखो, जो मुख्य सहयोगी था वो ही भाग गया। परिवार की माता ही धोखा दे जाए तो सारे परिवार का क्या हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे माता को सपोर्ट करेंगे, अबोध बच्चे, दुदमुहे बच्चे माता को सपोर्ट करेंगे या बाप को सपोर्ट करेंगे, किससे ज्यादा प्यार मिलता है। तो सारे बच्चे भाग खड़े हुए। जो आदि में हुआ सो अंत में भी जरूर होता है। आदि में भी हुआ कि माता भाग गई तो एडवांस पार्टी में भी अंत में क्या होता है, है? क्या होता है? माता भाग जाती है। जो 1998 में द्वापर युग की शूटिंग के अंत में जो गाया हुआ है महाभारी महाभारत युद्ध, उसमें माता भाग खड़ी होती है। वाणी में भी बोल दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। कौन ब्रह्मा? दादा लेखराज है। हाँ, आदि ब्रह्मा वो है जिसके मुख से सुन करके फर्स्ट ब्राह्मण बनता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र। कौन है? प्रजापिता। तो जो आज में हुआ वो द्वापर युग के अंत की शूटिंग में एडवांस पार्टी में भी होता है। ब्रह्मा भागा तो विघटन शुरू हो गया। तो बताया इन चित्रों को बच्चे क्या जानते हैं कि शिव जयंती क्या है, ये अंत में जय जयकार क्या होती है, किस समय की यादगार है। तो वो बाबा ने लिखा है कि ऐसे अगर कोई स्क्रीन के ऊपर भी बनाए देवे क्या, किसके ऊपर? साधारण कपड़े के ऊपर नहीं, साधारण गत्ते के ऊपर नहीं, टीन के ऊपर नहीं, काय के ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन में क्या खासियत होती है? अरे ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है या नहीं? तो ऐसे चैतन्य चित्र तैयार कोई कर देवे कि ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, जैसे धर्म पिताएं बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो, उनका चेहरा ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, आत्मिक स्थिति वाला या देवहन वाला दिखाई देता है? है आत्मिक स्थिति वाला दिखाई देता है। ऐसे ट्रांसपेरेंट चित्र स्क्रीन के ऊपर बनाए देवे जैसे ये है, तो जितने सेंटर्स हैं
100 सेंटर्स हैं। क्या कहा? 67 में पहले महीने में कितने सेंटर थे? 100 सेंटर्स थे। भले क्या मैं समझता हूं, कोई जास्ती जास्ती स्टेज पर बनेंगे तो 20-25 रुपया लगेगा। मैं ऐसे समझता हूं, तो क्या 2,500 खर्चा होगा एक एक सबको भेज देवे? जो अपने घर के बाहर में सेंटर्स के बाहर में रखें और कोई और भी चाहते हैं कि हम अपने घर के बाहर में रखें तो जास्ती भी बना देवे। 20-25 रुपया एक एक के लिए कोई खर्च जास्ती नहीं है। अगर ये ऐसी कोई स्क्रीन बनावे तो चैतन्य की ओर इशारा किया या जड़ चित्र के ऊपर इशारा किया है? ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा होगा? ब्रह्मा बाबा ने जड़ समझा। ऐसे मैंने बॉम्बे में लिखा है, है? बॉम्बे में क्यों लिखा है? खास बॉम्बे में क्यों लिखा? उस नगरी का नाम बॉम्बे क्यों रखा है? हाँ, क्योंकि बोला बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जो बॉम्बे है, जो काम कोई नहीं कर सकता, वो काम हर हर बम बम की विनाशकारी नगरी कर दिखाती है। तो मैंने बॉम्बे में लिखा है। अभी बाबा को देखो और कुछ भी पता नहीं है इन सब बातों का कि बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे बनते हैं। सिर्फ सुना है स्क्रीन पर बनते हैं ट्रांसपेरेंट। स्क्रीन किसको कहते हैं बाबा ये भी नहीं जानते, तो ये भी बाबा ध्यान में नहीं ले आते हैं। बाबा कितना मीठे हैं देखो, अक्सर कर जास्ती यारी यारी रहती तो है। जैसे कि शिव जयंती नजदीक आती जाती है, बाप की यादगारी जास्ती जास्ती आती जाती है। किसको, किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। जैसे जैसे महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की शिवरात्रि नजदीक आती जाती है, सारी दुनिया में तो अज्ञान अंधकार की रात्रि है ही, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी अज्ञान अंधकार की रात्रि और एडवांस ब्राह्मणों में भी अज्ञान अंधकार की रात्रि जास्ती जास्ती आती जाती है। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को जो महाशिवरात्रि जा आएगी तो बाप के सामने कौन से बच्चे या कौन सा बच्चा होगा जिसको सबसे जास्ती बाप की याद आ जाएगी?
मुकर्रर रथ
जिसके लिए बोला है कि बाप टीचर सदगुरु एक ही है, वो रथ, वो बाप भी है टीचर भी है सदगुरु भी है, उसके लिए बोला।
अरे उस बाप का बच्चों में कौन सा बच्चा है? बड़ा बच्चा कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की जास्ती, ब्रह्मा बाबा को जाते से जास्ती याद बढ़ती जाती है। और जब प्रत्यक्षता होगी, शिव जयंती आएगी, तो कौन सी आत्मा होगी जिसको बाप की सबसे जास्ती याद आएगी, जिसके लिए ये सारी पढ़ाई चल रही है सुप्रीम टीचर की? हाँ, तो यादगिरी जास्ती जास्ती आती जाती है। बस बाबा तो अपना अनुभव सुनाते हैं, बाकी बाबा का ये विचार है क्या? देखो, ये सुन भी रहे हैं ना? कौन? ब्रह्मा बाबा। तो स्क्रीन में बनाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे वाले को भी लिखेंगे, या जो जो बाबा का चित्र है। तो प्रिंसिपल अच्छा चाहिए, नहीं तो ये एक चित्र है जो खराब कर देते हैं। कौन सा चित्र है? कौन सा चित्र खराब कर देते हैं जो अच्छा बनाना चाहिए है? है? अरे 66-67 में भी वो चित्र है, लेकिन बाबा कभी कभी इमर्ज करके बोलते हैं। एक चित्र है जो खराब कर देते हैं, या विष्णु का भी कोई खराब कर देते हैं, जो अभी है उसको भी खराब कर देते हैं, और जो नहीं है प्रैक्टिकल में। कौन? शंकर का चित्र है, उसको भी खराब कर देते हैं। तो अगर स्क्रीन पर बने तो बाबा कहते तो रहते हैं ना बच्चे, अब ये कोई को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये जो चित्र हैं सबके पास होना चाहिए, और उन चित्रों को बाहर में टांगे, और उन चित्रों के बाजू में पहेलियां भी लिखी हुई हों। क्या? उन चित्रों के बाजू में पहेलियां भी लिखी हुई हों, जैसे अभी बताया, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो इस त्रिमूर्ति के चित्र में, उस चित्र के बाजू में लिखा हुआ होना चाहिए कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जैसे बाबा वो छपा रहे हैं, छपे नहीं है, ये कैलेंडर भी छपा रहे हैं, और उत्तम प्रिंटिंग का छपा रहे हैं। वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। कैलेंडर छोटे होते हैं और वो जो 30x40 इंच के बड़े हैं, और सब के घर में हो तो भी समझानी मुख्य इनके ऊपर है। किनके ऊपर है? ये दो गोले भी होने चाहिए त्रिमूर्ति के चित्र में। कौन से है? नरक का गोला और स्वर्ग का गोला। न्यू तो है, तो ये गोला नीचे वाला भी बहुत अच्छा है, परंतु कितना निकाल के कितना निकाले? ये छोटा कर दिया तो ये बत्तियां भी लगा दें, नहीं तो बच्ची है गोला भी बड़ा अच्छा, ये गोला भी
अंधे की औलाद अंधों का आईना है। ये पूरा बिल्कुल आईना है। जो एफोर्ट भी कर सकें, बहन भी कर सकें, तो ऐसा बड़ा बना दें। बार में दिन में रखने का है क्या? दो तीन दिन लगातार रखने का है। हाँ, बरसात की संभाल करनी है। बरसात में जब बरसात होगी तो फिर अंदर घर में रख देने चाहिए। और बरसात तो चारों तरफ होगी कि चित्रों के पास ही होगी? है? हाँ, चारों तरफ जब बरसात होगी तो उस समय इनको अंदर कर दो। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हैं? गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। अंदर घर में रख देना चाहिए। बाकी झाड़ न भी बनाया तो भी हर्जा नहीं है। चलो ये भी ठीक है। बाहर बाहर में रोशनी होगी ना कुछ, तो साफ देखेंगे। क्योंकि दीपमाला में भी बाहर में सजाते हैं ना, है? दीपावली पर क्या करते हैं? है? बाहर में दीपक रख करके सजाते हैं ना। हर एक मकान के बाहर जो चौहद्दी होती है उस पर दीपक जगमगाते हैं या नहीं? जगमगाते हैं। तो अगर ये भी बाहर में बत्तियां थोड़ी जगावे तो हर एक उसी दिन जैसे दीपमाला के दिन सब सजाते हैं ना, ये कुछ थोड़ा महंगा है क्या? है? ट्रांसपेरेंट चित्र थोड़ा महंगा है तो भी कोई हर्जा नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी युक्तियां बाबा बताते रहते हैं ना। बाबा का ये ख्याल फिर होता है, क्योंकि ये जो है मोस्ट प्रिंसिपल समझाने। क्या? कौन से चित्र के ऊपर? त्रिमूर्ति के चित्र की बात हो रही है, साथ में गोला भी लगा हुआ है। ये मोस्ट प्रिंसिपल समझानी है, जहां ये इस तरफ में ये लिखत लगी पड़ी है, ये लिखत देखते हैं ना, उस तरफ में थोड़ी पहेलियां हूं। क्या कहा? इस तरफ और उस तरफ माने क्या? इस तरफ माने ब्रह्मा की तरफ। अभी किसके तन में बोल रहे हैं? है? ब्रह्मा के तन में। तो बोला उस तरफ में थोड़ी पहेलियां भी हूं, ब्रह्मा की तरफ नहीं, उस तरफ में। किस तरफ? शंकर की तरफ थोड़ी पहेलियां भी हूं, और बीच में तो पहेलियां हैं ही हैं। बीच में माने विष्णु के चित्र में, नीचे में भी हूं जहां गोला है, दो गोले भी लगे हुए हैं त्रिमूर्ति के आसपास, है ना, और ऊपर में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है ऊपर? है? है? ऊपर में क्या लगा हुआ है त्रिमूर्ति के? है? हाँ, ऊपर में लगा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है उसमें लिख देवे, ऊपर में जो लगा हुआ है इस इशारा किया, ये जो लिखा हुआ है ऊपर में उसमें लिख देवे त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता जयंती। क्या कहा है? त्रिमूर्ति शिव जयंती यानी तीन मूर्तियों के ऊपर ना लिखें। कोई समझे कि तीन मूर्तियों के सिर के ऊपर लिख दें क्या है गीता जयंती? नहीं, कहां लिखें? किसके ऊपर? शिवलिंग के ऊपर लिखें त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता जयंती। सो गीता जयंती क्यों है? अरे
जयंती
क्यों?
गीता जयंती बाद में?
अरे बाद में नहीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती के साथ ही साथ गीता जयंती। अव्यक्तवाणी में पहली में ही बता दिया था, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है शिव शक्ति अव्वल नंबर में? नव दुर्गाओं में जिस मूर्ति की पहले पूजा होती है,
है?
लक्ष्मी महागौरी। तो शिव जयंती सो गीता जयंती, जब महाशिवरात्रि होगी इस दुनिया में घोर अज्ञान की, घोर अज्ञान काल की महाशिवरात्रि होगी, सभी अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, उस समय किसकी जयंती? शिव जयंती सो गीता जयंती। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं है? हैं? उस समय से पहले गीता आने वाली नहीं है, उसी समय ठीक उसी टाइम पर गीता जयंती माने जय जयकार। किसकी जय जयकार? गीता माता की जय जयकार। कौन सी गीता? गीताएं तो दो हो गई, एक सच्ची गीता एक झूठी गीता। तो कौन सी गीता की जय जयकार? सच्ची गीता कौन है? सच्ची गीता कौन है? लक्ष्मी, छोटी माँ और बड़ी माँ। झूठी गीता क्यों है? सच्ची माँ कौन और झूठी माँ कौन है? जो माँ बने परिवार की और भाग जाए बीच में छोड़ के, तो झूठी या सच्ची है? झूठी। और जो स्त्रियम बन ही रहे एक बार बन के संबंध जोड़ के, वो कैसी? सच्ची। क्योंकि बोला है संबंध बनाना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना करके अंत तक निभाना बड़ी बात है। तो निभाने वाला सच्चा या सिर्फ संबंध जोड़ने वाला सच्चा? निभाने वाला सच्चा। तो कौन सी माता निभाने वाली है? जिस माता की नौ देवियों के पूजन में पहले पहले पूजा होती है वो है निभाने वाली अव्वल नंबर, और जिसकी अंत में पूजा होती है वो है, है? भगाने वाली या थमाने वाली है? थमाने वाली नहीं, भगाने वाली। जो मुरली में बोला कोई है थमाने वाले और कोई है भगाने वाले। तो देखो अब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं क्या, बताओ ये ब्रह्मा बाबा बोले कि कौन बोले? 38वीं शिव जयंती, 67 में कौन सी जयंती? 38वीं शिव जयंती। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोले। उन्हें पता ही नहीं है, उनके फॉलोअर्स को भी पता नहीं है, कि असली जो शिव जयंती है वो तो अभी हुई ही नहीं है। अभी सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि आई ही नहीं है। जो सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाए, और ब्राह्मणों की दुनिया भी पूरे अज्ञान अंधकार में अभी डूबी नहीं है। डूब गई है? अरे हाँ, कुछ कुछ मरते रहते हैं। सब मर गए क्या है? सब तो नहीं मरते, कोई मरते मरते बचे जाते हैं, बचाने वाले बचा लेते हैं, भगाने वाले भगा देते हैं। तो बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने 38वीं शिव जयंती, ऐसे बाबा विचार करते रहते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा विचार करते रहते हैं। और लिखा भी है बाबा ने, बॉम्बे वालों को लिखा है। अभी टाइम तो पड़ा है, स्क्रीन में बनने वाले होंगे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल जल्दी बन सकती होगी स्क्रीन। अगर बॉम्बे वाले समझेंगे इस बात की गुह्यता को, किस बात की गुह्यता को है? किस बात की गुह्यता को समझेंगे? अरे ट्रांसपेरेंट चैतन्य चित्र बनाओ, किस बात की गुह्यता को है? ट्रांसपेरेंट चैतन्य चित्र बनाओ। ट्रांसपेरेंट माने अव्यक्त स्टेज या व्यक्त स्टेज? अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। क्या क्या वाणी में बोला? तुम्हारी अव्यक्त स्टेज किसको प्रत्यक्ष करेगी? बाप को प्रत्यक्ष करेगी। संसोज फादर ऐसे कर देगी। तो बोला इस बात को बॉम्बे वाले समझेंगे। क्या बॉम्बे वाले क्यों समझेंगे? दूसरे शहर वाले क्यों नहीं समझेंगे है? अरे बॉम्बे किसकी नगरी है? हर हर बाप, हर हर बम बम की नगरी है। और बाप की बेटी माया भी वहां रहती है। माया बाप के घर में आएगी या नहीं आएगी? आएगी, आती है। तो बॉम्बे वाले पहले समझेंगे, बाप भी जहीन है और बाप की बच्ची माया भी बुद्धिमान जहीन है, तो बॉम्बे वाले बनाए देंगे। क्या कौन बनाए देंगे? ऐसा स्क्रीन बॉम्बे वाले बनाए देंगे। पहला स्क्रीन क्या बनेगा? पहले स्क्रीन का चित्र कौन सा बनेगा है? ब्रह्मा का बनेगा है? तीन मूर्तियां बनेंगी। जिन मूर्तियों के लिए कह दिया ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, बनाने वाले इन चित्रों को बिगाड़ देते हैं, वो एक्यूरेट है। हाँ, त्रिमूर्ति में एक चित्र है, क्या सबसे ऊपर दिया हुआ है, वो है भी त्रिमूर्ति शिव। क्या क्या है? त्रिमूर्ति शिव, उसमें ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाला भी है और जड़त्वमय ब्रह्मा भी है और बाप भी है। कोई कहे बाप कौन? शिव बाप नहीं, शिव बाप नहीं, लेकिन शिव बाप ने जो कहा है उसको सत्य करने वाला, शिव बाप ने कहा है तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस शिवलिंग में ही कोई हीरो पाठधारी हीरो आत्मा है जो बाप की याद में रहता है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी याद में निरंतर टिकने वाला वो मूर्ति भी है तो बम्बे वाले बनाए देंगे। एक मूर्ति पहले बनाएंगे या सारी मूर्तियां बनाए देंगे? हैं? कौन सी मूर्ति बनाएंगे, दो या चार? पहले क्या बनाएंगे? अरे पहले पहले एक मूर्ति बनेगी या सारी बनेंगी? एक बनेगी। कौन सी बनेगी? शंकर तो पुरुषार्थी है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और उसे परम पिता के नाम के बाद वो शब्द लगाया जाता है जो शिवलिंग के ऊपर लिखा भी है। क्या लिखा है? परम पिता परमात्मा शिव। दोनों शब्दों के बाद शिव क्यों लिखा है? परम पिता अलग और आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा अलग, तो दोनों के बाद शिव क्यों लिखा है? हाँ, कि दोनों ही आत्माएं बाप समान हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती हैं। जब वो शिवलिंग के रूप में पूजनीय बन जाता है तो बताया बना देंगे। कौन बना देंगे? है बॉम्बे वाले बना। क्यों बॉम्बे वाला ऐसा क्या काम करेंगे? जो वो अव्यक्त मूर्ति बन जाएगी है? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे बम छोड़ के। सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ये नहीं कहा परम पिता प्रत्यक्षता बम। क्या कहा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो परमात्मा के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा जो गीता में भी बोला है तीन प्रकार की आत्माएं, दो हैं सामान्य रूप से क्षर और अक्षर। अक्षर है एक शिव जो कभी क्षरित नहीं होता और क्षरित आत्माएं सारी मनुष्य आत्माएं और सभी प्राणी मात्र क्षरित हैं, शक्ति क्षीण करने वाले हैं। लेकिन उनमें एक आत्मा ऐसी भी है जिसको गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा माने आत्माओं के बीच में परम पार्ट हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो बॉम्बे वाले उसका चित्र बनाए देंगे। बॉम्बे वाले बनाए देंगे, चैतन्य चित्र बनाए देंगे। ये कैसे? अरे अभी तो बताया बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। परमात्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेगी या दूसरे प्रत्यक्ष करेंगे? स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेगी कि दूसरे उसको प्रत्यक्ष करेंगे? यही तो अच्छा है कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। क्या अच्छा है? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं
बाप अपने को प्रत्यक्ष करे, जैसा बाप करेगा वैसा ही बच्चे करेंगे ना, है? तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक नहीं, एक चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होने वाले बच्चे जो अपने सितारों रूपी प्रकाश को स्वयं प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा के होते हुए भी प्रकाशित करते हैं, इतना प्रकाशित करते हैं कि चंद्रमा अमावस्या में डूब जाता है, अंधकार में डूब जाता है और सितारे अपने को प्रत्यक्ष कर देते हैं। वो हैं रात के सितारे, और एक हैं ऐसे सितारे जो अपनी रोशनी को ज्ञान सूर्य की रोशनी में दिन में समाये देते हैं, अपने को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे सितारे आज उनकी यादगार है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, खास भारत में यादगार है। जो भी कंपनी बनती है, जो भी संस्था बनती है, तो नाम रखते हैं राम प्रसाद एंड संस कंपनी। बाप का नाम पहले और बच्चों का नाम लिखते ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं संस कंपनी, माने अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्या फर्ज है उनका? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, वो समझते हैं हमारी प्रत्यक्षता हो। तो ये अंतर है क्या? ज्ञान चंद्रमा की पालना लेने वाले बच्चों में और ज्ञान सूर्य की पालना लेने वाले बच्चों में, तो वो बच्चे ऐसा स्क्रीन पहले पहले बनाए देंगे। बाम्बे वाले इसको समझेंगे और बना देंगे। क्यों दूसरे क्यों नहीं बना देंगे? है अरे ये बम फोड़ना अच्छी बात है, बम फोड़ना अच्छी बात है या खराब बात है? और परमात्मा बम फोड़ना अच्छी बात है? परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करना अच्छी बात है, वो भी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया के बीच या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच है? एडवांस ब्राह्मण जानते नहीं है, है? तो उनको क्या प्रत्यक्ष करना?
बेसिक
ये क्या कर रहे हैं?
बाबा बच्चे बातचीत करता है, ऐसा बोलता है।
बातचीत करने से क्या होता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। बातचीत करने से प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, यहाँ बाम्ब फोड़ने की बात है। ये बाम्ब परमात्मा प्रत्यक्षता की बात है। परमात्मा जो कार्य करके दिखाता है, वो कार्य दुनिया में कोई करके नहीं दिखा सकता। परमात्मा बाप को, उसके कार्य को, क्या मुख्य कार्य है? क्या मुख्य कार्य है? पतितों को पावन बनाना। पावन को पतित बनाना नहीं, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना या पावन को पतित बनाना, ये संग के रंग से होता है या बिना संग के रंग के होता है? संग का रंग साकार में होना चाहिए या सिर्फ बुद्धि के द्वारा निराकार का संग होना चाहिए? है साकार में होना चाहिए। साकार इंद्रियों से संग का रंग लगेगा या बिना इंद्रियों के संग का रंग लग सकता है, है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या बिना खाए याद आ जाएगा, है? खाया होगा तो याद आएगा। अतीन्द्रिय सुख लेने वाली जो आत्माएं हैं, उन्होंने कम से कम श्रेष्ठ इंद्रियों आँखों का संग लिया होगा, अनुभव किया होगा, सात्विक इंद्रियों में सात्विक सुख का अनुभव लिया होगा तो याद करेंगी या बिना लिए याद करेंगी, है? संग लेकर के याद करेंगी या बिना संग के याद करेंगी? संग लिया होगा तो याद करेंगी। अब वो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो या कर्म इंद्रिया, ये हिसाब भी पूर्व जन्मों के आधार पर आधारित है या बिना पूर्व जन्मों के ऊपर आधारित है? है, पूर्व जन्मों के ऊपर आधारित है। जिस लक्ष्मी वाली आत्मा ने 21 जन्म तक एक का ही संग का रंग लिया होगा, पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के संबंध में शेष इंद्रियों का ही सुख लिया होगा, उस आत्मा को शेष इंद्रियों से ज्यादा याद आएगी या भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा याद आएगी? है, शेष इंद्रियों से उसे जास्ती याद आएगी, भ्रष्ट इंद्रियों की उसे याद आएगी। क्यों है? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों को भ्रष्टाचारी दुनिया में उन लगातार संग की याद ही है ही नहीं। फिर क्या बात, इससे क्या साबित हुआ कि कोई कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारी दुनिया में भ्रष्ट इंद्रियों का ही संग का रंग लिया है। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों का ही संग का रंग लिया है और संग का रंग लेकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई। क्या? संग भी लिया और संग लेकर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई, तो उन आत्माओं को शेष इंद्रियां ज्यादा याद आएंगी या भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा याद आएंगी? है, भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा याद आएंगी। तो ये अनेक प्रकार की बातें हैं जो हिसाब किताब में आती हैं। बाकी ये पक्का है कि संग का रंग लिए बिना प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल शरीर के साथ, प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के साथ याद स्थाई नहीं आ सकती। क्या? संग लिया है तो याद आएगी, नहीं लिया है तो याद नहीं आएगी। जो पक्के विधर्मी हैं अपने अपने धर्म के, जो कभी दूसरे धर्म को मानते ही नहीं, दूसरा धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, दूसरे के वो प्रार्थना स्थल में, पूजा के स्थल में जाते ही नहीं, उसे साबित होता है जो कभी शिवलिंग की पूजा करते ही नहीं। जैसे इस्लामी अपने धर्म के जो पक्के होंगे, कन्वर्ट नहीं होते, जिन्होंने कभी शिवलिंग की पूजा की ही नहीं 63 जन्मों में, वो याद करेंगे? है, नहीं याद करेंगे ना। तो पति से पावन बनेंगे? नहीं बनेंगे, अधूरे रह जाएंगे। इसलिए बोला जो पतित से पावन बनते नहीं, वो पतित पावन सीताराम कहकर बुलाते भी नहीं, और जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी, ब्रह्मा कुमारियों की तरह नहीं। क्या? कि संगठन में बैठेंगे, हाल में बैठेंगे, आवाहन करेंगे गीत बजाएंगे तब ही बुलाएंगे, नहीं घर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ब्राह्मणों के बीच बैठे हैं, धंधे धोरी में रहे हैं, तो भी अंदर से लगन क्या लगी रहे हैं? बाबा को बुलाएंगे, बाबा आ जाओ, बहुत टाइम हो गया क्या? ओम शांति।